ಪಯೋನಿರಿನನ್ ದೋಷ ದಹನ ಗುಣ ಗಹನ ಘನ ಹರಿ ಕರಿ ಹರಿ ಅರಹನ್ ಸ್ವಾನುಭೂತಿ ರಮಣಿ ರಮಣ ಜಗನಾಯಕ ಜಯವನ್ ಸಿದ್ಧ ಶುದ್ಧ ಸಾಧಿತ ಸಹಜ ಸ್ವರಸ ಸುಧಾರ ಸಧಾರ ಸಮಯ ಸಾರ ಶಿವ ಸರ್ವಗತ ನಮತ ಹೋ ಸುಖತಾ ಜೈನೀ ಬಾನೀ ವಿವಿಧ ವಿಧಿ ವರ್ಣತ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಮಾಣ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮುಂದ್ರಿತ ಹಿತ ಹರ ಕರಂ ಸಕಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಮೈ ನಮೋ ನಗನ ಜೈನ ಜನ ಜ್ಞಾನ ಧ್ಯಾನ ಧನ ಲೀನ್ ಮೈ ನಮಾನ ಬಿನ ದಾನ ಧನ ಏನ ಹೀನ ತನ ಚೀನ್ ಇಹ ವಿಧಿ ಮಂಗಲ ಕರನ ತೇ ಸಬ ವಿಧಿ ಮಂಗಲ ಹೋತ ಉದಂಗನ ದೂರಿ ಸಬ ತಮಜೋ ಭಾನುದೋ.
ಕರ್ಣಾ ನಿಯೋಗ ಪರಿಚಯ ಪುಸ್ತಕ ಆಧಾರ ಹಮನೆ ಆಜ ತಕ್ 15 ತೋ ಅಪನೆ ಲೆಸನ್ಸ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಹೋ ಗಏ ಹೈ. ಅಭಿ ಆಜ ಗುಣಸ್ಥಾನ ಕಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚರ್ಚಾ ಕರೆಂಗೇ. ಪಹಲೆ ಯಹಾಂ ಗುಣಸ್ಥಾನ ಪ್ರವೇಶಿಕಾ ಪೂರಿ ಆಪನೆ ಪಢಿ ಲಿ ಹೈ, ತೋ ಮೇರೆ ಖ್ಯಾಲ್ ಸೆ ದೀಪಾಲಿ ನಹೀಂ ಥಿ ತಭಿ ಜಬ್ ಯಹಾಂ ಹುಯಿ ಥಿ, ಆಪ್ ಥೆ, ಆಪ್ ಭಿ ನಹೀಂ ಥಿ. ಠೀಕ್ ಹೈ, ತೋ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಯಹಾಂ ಸ್ಥೂಲ ರೂಪ ಸೆ ಚರ್ಚಾ ಹೋಗಿ. ಗುಣಸ್ಥಾನ ಗುಣಸ್ಥಾನ ಶಬ್ದ ತೋ ಆತಾ ಹೈ, ಉಸ್ಕೆ 14 ನಾಮ ಭಿ ಹಮ ಯಾದ ಕರ್ತೆ ಹೈ, ಪರಂತು ಉಸ್ಕಾ ಸಾಮಾನ್ಯತಃ ಕ್ಯಾ ಸ್ವರೂಪ ಹೈ, ಇತ್ನಿ ಬಾತ್ ಹಮ ಯಹಾಂ ಚರ್ಚಾ ಕರೆಂಗೇ. ತೋ ಯೆ ಜೋ ಹೈ ಹೈ ಉಪರ್ ಗುಣಸ್ಥಾನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚರ್ಚಾ, ತೋ ಇಸ್ಮೆ ಮುಖ್ಯತಃ ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಕಿ ಪಾತ್ರತಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ, ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ನೇ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಯಾನಿ ಕಿಸ್ ತರಹ ಸೆ ಸಮ್ಯ ಉಸ್ಕಿ ವಿಧಿ ಕ್ಯಾ ಹೈ ಔರ್ ಉಸ್ಕಾ ಸ್ವರೂಪ ಕ್ಯಾ ಹೈ ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವ ಕಾ, ಇಸ್ಕಿ ಚರ್ಚಾ ಇಸ್ಮೆ ಕರೆಂಗೇ. ಕ್ಯೂಂಕಿ ಯೆ ಗುಣಸ್ಥಾನ ಆದಿ ಯಾ ಕೋಯಿ ಭಿ ಜೋ ಕರ್ಣಾ ನಿಯೋಗ ಕಾ ವಿಷಯ ಹೈ ವೋ ಮಾತ್ರ ಉಸೆ ಜಾನ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ನಹೀಂ ಪರಂತು ಅಪ್ನೆ ಕೋ ಜಾನ್ನೆ ಪಹಚಾನ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಹೈ. ಕರ್ಮ ಕಿ ಭಿ ಥಿಯರಿ ಹಮ ಇತ್ನೆ ಡಿಟೇಲ್ ಮೇ ಇಸ್ಲಿಯೆ ಪಡ್ತೆ ಹೈ, ಉಸ್ಕಾ ಅಭ್ಯಾಸ ಕರ್ತೆ ಹೈ ಕಿ ಕರ್ಮ ಕೆ ಉದಯ ಮೇ ಕೈಸಿ ಕೈಸಿ ಅವಸ್ಥಾಯೆ ಬನ್ತಿ ಹೈ, ಕ್ಯಾ ಕ್ಯಾ ಉಸ್ಕಾ ಫಲ ಮಿಲ್ತಾ ಹೈ, ಔರ್ ಜೀವ್ ಉಸ್ಕೋ ಅಪ್ನೆ ರೂಪ ಅಪ್ನೆ ಸ್ವರೂಪ ರೂಪ ಸೆ ಮಾನ್ತಾ ಹೈ, ಯೆ ಉಸ್ಕಿ ಭೂಲ್ ಹೈ. तो उसको ज्ञान कराया जाता है कि ये जो तू अपना मान रहा है, अब ये शरीर को तू मैं मान रहा है, तो ये तो नाम कर्म के उदय में होने वाली विशिष्ट ये उद्गल की अपना. तो इसे इस तरह से जब हम समझते हैं तो ये ख्याल आता है कि ये तो जीव का कुछ नहीं है इसमें, परंतु जीव अपनी मूर्खता से अपनी भूल से उसको अपने रूप मानते हैं मानता है और ये उसकी गलती दोहराता है, तो और नए नए शरीरों की वहां प्राप्ति भी होती है. तो उसमें से छूटने का मार्ग अभी क्या है उसकी आज हम चर्चा करेंगे. गुणस्थान संबंधी तुम्हारी उत्सुकता देखकर मेरा भी उत्साह द्विगुणित हो गया है. अरविंद भाई भी रोज पूछते हैं कि भाभी कितना लिख लिया, जल्दी पूर्ण कीजिए, हमें शीघ्रातिशीघ्र पुस्तक छपवाना है. ये दोनों पुस्तक में अरविंद भाई दोषी हमेशा हो, हम छापेंगे छापेंगे. उनकी प्रेरणा से बहुत कुछ लिखा भी और छापा भी. सर्वप्रथम गुणस्थान क्या है देखेंगे. राजस्थान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान आदि शब्दों से हम परिचित है, तो क्या गुणों के समूह को गुणस्थान कहा है. आदिपाली गुणों के समूह को क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं, तो ये गुणस्थान कुछ अलग बात होनी चाहिए. या गुणों के स्थानों यानी भेदों को गुणस्थान कहा है. हमेशा जो हम कहते हैं कषाय स्थान है, अध्यवसाय स्थान है, योगों के स्थान है, उसका अर्थ होता है उसके भेद है. कषायों के जो अलग अलग बहुत सारे भेद है, असंख्यात लोक प्रमाण भेद है, तो उसको हम कहते हैं कषाय के स्थान. वैसे ये गुणों के स्थान होंगे क्या, गुणों में अलग अलग भेद होंगे, थोड़ा छोटा गुण, थोड़ा बड़ा गुण, थोड़ा अधिक डिग्री वाला, थोड़ा अधिक डिग्री वाला, क्या सबके ज्ञान गुण तो समान है. तो गुणों में कोई स्थान या भेद होते नहीं, गुण तो पूरी अपनी शक्ति के साथ विद्यमान होता है। ज्ञान गुण में कोई डिफरेंस नहीं, हर एक का ज्ञान गुण तो समान है, सिद्ध का हो या निबोध का हो, ज्ञान गुण में तो पूरी की पूरी कैपेसिटी विद्यमान है। तो डिफरेंस कहाँ है? हाँ, पर्याय। ऐसा सवाल तुम्हारे मन में उठेगा तो गुणस्थान क्या है, द्रव्य है, गुण है कि पर्याय है? बोलो दीपाली, गुणस्थान नाम का कोई द्रव्य है क्या? हमने सुना है छह द्रव्य में उसका नाम नहीं, और कोई ऐसा गुण है गुणस्थान नाम का? वो भी नहीं है। तो इस विश्व में द्रव्य, गुण और पर्याय के बिना कुछ होता ही नहीं है। तो अभी हमें पता नहीं, फिर भी वो क्या होना चाहिए? गुणस्थान पर्याय। अब ये किसकी पर्याय वो भी अभी देखेंगे। द्रव्य तो नहीं है क्योंकि छह द्रव्य में इस नाम का कोई भी द्रव्य नहीं है। यह गुण भी नहीं है क्योंकि गुण की परिभाषा तो तुम जानती ही हो कि जो द्रव्य के संपूर्ण भागों और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में रहता है उसे गुण कहते हैं। ये परिभाषा याद है आपको? तो ये जो गुण तो कायम रहते हैं परंतु गुणस्थान बदलते रहते हैं, तो जो बदलने वाला होगा वो क्या हो सकता है? पर्याय हो सकती है। और ऐसे ही ना सिद्ध बनते हैं तो ये गुणस्थानों का अभाव करके बनते हैं। यदि गुण होते तो सिद्धों में भी वो रहने चाहिए थे, परंतु सिद्धों में गुणस्थान नहीं है। गुणस्थान तो अरिहंत तक का अवस्था तक ही है, 13 और 14, उसके बाद सिद्ध जो है वो गुणस्थानातीत है। गुणस्थान तो बदलते हैं और गुणस्थानों का अभाव करके गुणस्थानातीत यानी गुणस्थानों के पार सिद्ध अवस्था प्रकटती है, इसलिए वह गुण भी नहीं है। नाम गुणस्थान होने पर भी ये पर्यायों के स्थान यानी भेद है। शास्त्र में कहीं कहीं पर्याय को भी गुण कहते हैं। आपने पंचाध्याय में याद है पर्याय क्या कहा था, कौन सा गुण कहा था? एक सहभूवी और एक क्रमभूवी, सहवर्ती और क्रमवर्ती। तो क्रमवर्ती गुण कहेंगे तो वहाँ जान लेना ये पर्याय की बात करें। और एक साथ सारे ज्ञान दर्शन सारे एक साथ विद्यमान है उसको क्या कहते हैं? सहवर्ती, एक साथ रहते हैं सारे। और पर्याय एक ज्ञान गुण में पर्याय जो क्रम 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 से होते हैं उसको गुण भी कहेंगे, परंतु वहाँ पर्याय की बात है। यह हमें उसका अर्थ बराबर ख्याल में आना चाहिए। शास्त्र में तो भाव शब्द भी किसी के लिए भी होगा, द्रव्य के लिए भी, गुण के लिए, पर्याय के लिए। गुण भी शब्द कहीं कहीं या पर्याय शब्द भी कहीं कहीं अन्य अन्य अपेक्षा से होगा, तो वहाँ अपने को पता चलना चाहिए कि किसकी बात चल रही है। जीव की पर्यायों के असंख्यात प्रकार होने पर भी है तो असंख्यात प्रकार, परंतु स्थूल रूप से उनके 14 भेदों का कथन किया जाता है, यानी 14 ही हमने ग्रुप किए स्थूल रूप से। सूक्ष्मता से देखेंगे तो मिथ्यात्व से लेकर अहंत अवस्था तक असंख्यात भेद हो सकते हैं, अलग अलग अलग, क्योंकि हर एक स्टेप पर बहुत सारे कषाय उनके, या जो जो हम अभी डिफ्रेंशिएट करेंगे जिस कारण से गुणस्थान बनेंगे उसकी अपेक्षा से उसमें बहुत सारे भेद होंगे, परंतु मुख्य रूप से 14 भेद बताए। जीव में अनंत गुण है और उनमें प्रत्येक गुण की पर्याय है, परंतु उनमें से अभी अनंत गुणों के पर्याय में ऐसे गुणस्थान पड़ेंगे क्या? तो गुणस्थानों के भेद करने के लिए हमको कौन से गुण के पर्यायों को तरफ देखना है? तो कहते कि श्रद्धा और चारित्र गुण की अवस्थाओं में मात्र ये दो गुण लिए, पर्यायों में, गुणों में ने ये पर्यायों में जो तारतम्यता पाई जाती है उसकी ये दो गुण ले, और किसको? योग की अपेक्षा से भी इन्हें 14 गुणस्थानों में विभाजित किया है। अभी अंतिम दो जो गुणस्थान है वहाँ केवली की भी अपेक्षा ली है, तो वो तो देखेंगे अब कहाँ कौन सी अपेक्षा से कहाँ कहाँ गुणस्थानों का कैसा विभाजन हो जाता है। तो मुख्यतः से कौन से गुणों के लिए हमें? श्रद्धा और चारित्र, और उसमें कौन है? योग, योगी निमित्त है। अब इसकी परिभाषा देखते हैं कि गुणस्थान की शास्त्रोक्त परिभाषा है शास्त्र में जो बताई है और जो हमें याद होनी चाहिए। कल इसको रख के लाना, आपकी तो याद होगी इंदुबेन, آپ کی بھی تو آپ آپ کی یاد ہے نا, آپ کا تو ہوا ہے یہاں گنستان کا حصہ, تو دیپالی اور آپ زیادہ کل اس کی یاد کرنا, ابھی ہم پڑھیں گے اس کو اور یہ پریبھاشا بھی سمجھیں گے تو یاد ہو جائے گی, یہیں کی یہیں یاد ہو جائے گی. دیکھو پہلے پڑھتے ہیں, آپ بھی میرے پیچھے پڑھنا, موہ اور یوگ کے نمت سے جیو کے شردھا اور چارتر گن کی ہونے والی تارتمیہ روپ اوستھاؤں کو گنستان کہتے ہیں. ہم گنستان کی پریبھاشا کہتے ہیں نا, تو انت میں آئے گا اس کو گنستان کہتے ہیں. تو کسے گنستان کہا یہاں؟ اوستھاؤں کو کہا. تو انتم ہم انت سے پڑھیں گے پریبھاشا, تو اوستھاؤں کو گنستان کہتے ہیں, اتنا تو خیال میں آ گیا, کیونکہ وہ گن نہیں ہے اور دروے نہیں. تو کیسی اوستھا ہے؟ تو تارتم میں نے کم زیادہ, یعنی سپر لیٹی, اور کیا کہتے اس کو, کمپیریٹیو سپر لیٹی, اس کو کہتے تارتمیہ روپ اوستھا. تو کون سی گنوں کی اوستھا ہے؟ اوستھاؤں کی بات ہے نا, تو وہاں دروے بھی بتانا پڑے گا اور گن بھی بتانا پڑے گا کہ کون سے دروے کے کون سے گن کی اوستھاؤں کی بات کر رہے ہیں. تو پہلے میں پہلے ہم نے دیکھا کہ تارتمیہ روپ اوستھاؤں کو گنستان کہتے ہیں, اب کون سے گن کی تارتمیہ روپ اوستھا؟ شردھا اور چارتر گن کی. یہ کس کے گن ہیں؟ جیو کے. تو جیو کے شردھا اور چارتر گن کی ہونے والی تارتمیہ روپ اوستھاؤں کو گنستان کہتے ہیں. اب یہاں نمت بتانا ہے, کیونکہ یہ کرنانی یوگ میں کرموں کی جہاں جہاں ہم بات کریں گے وہاں نمت کی اور سے کتھن ہوتا ہے, اس کی مکھیتا سے جو پریائے ہوگی اس میں. تو ہم نے دیکھا تھا نا, یہاں ہم نے پانچ سموائے سیکھے تھے, تو وہاں سوبھاؤ بھی ہے, پرشارتھ بھی ہے, کال لبھی بھی ہے, بھویتویہ بھی ہے اور نمت بھی ہے. یہاں پر نمت کی مکھیتا سے بات کریں گے. ہے تو پانچوں سموائے ایک ساتھ, انیہ چاروں کو گون کر کے نمت کی مکھیتا یہاں ہوتی ہے, اس کو نمت کتھن کہتے ہیں. تو جو یہ کرنان یوگ جو شاستر ہے اس میں تو نمت کی مکھیتا سے بات کریں گے کہ کرم کرم نے یہ کرایا, یا جیو نے کرم کو باندھا, جیو نے کرم کو ناش کیا, جیو نے کرم کو اکشمت کیا, اس کو کہتے ہیں نمت کی بھاشا. پرنتو وہاں انیہ کارن ہے ہی نہیں, ایسی بات نہیں. کاریا تو پرتیک دروے میں اپنے اپنے کارن ہوتا ہے, کیونکہ دروے اپنے پریائے کا کرتا ہے. نمت آ کر اس کی پریائے بنا دیتا ہے, ایسی بات نہیں ہے. پھر بھی وہاں نمت کون سا ہے, اپستھت کون ہے, اس کی چرچا کرنے کے لیے اس کا کتھن آتا ہے. تو اس میں نمت کون ہے؟ موہ اور یوگ. تو پوری پریبھاشا ایسی ہوگی, پہلے میں پہلے نمت بتائیں گے. تو موہ اور یوگ کے نمت سے ابھی کون سے دروے کی کون سے گنوں کی اوستھا ہے؟ تو جیو دروے کے شردھا اور چارتر گن کی. اب اس میں کم زیادہ ہے نا, اس لیے ہونے والی تارتمیہ روپ اوستھاؤں کو گنستان کہتے ہیں. یاد ہو گیا؟ ہاں دیپالی, نمت کون ہے؟ بھلے اس میں سے یاد مت کرو, نمت کون ہے؟ موہر یوگ. کون سے دروے کی بات چل رہی ہے اور گن کون سے ہیں؟ ہاں, اور ان کی اوستھائیں تارتمیہ روپ اوستھا, اس کو گنستان کہتے ہیں. کل یاد کر لینا اس, آپ بتا سکو گی ان لوگوں کے. ہاں, ہونے والی تارتمیہ روپ اوستھاؤں کو گنستان کہتے ہیں. خیال میں آیا نا, یہ پریبھاشا سمجھنا بہت ضروری ہے. اکیلے شبد رتنا اس کو مہتو نہیں ہے. ابھی ہم جس طرح سے ہم نے سمجھا ہے تو بھلے شبد آگے پیچھے ہو جائے گا, پرنتو اس کا پورا بھاو اپنے کو معلوم ہونا چاہیے کہ پہلے تو نمت بتایا, پھر کون سے دروے کے کون سے گن کی کون سی اوستھا ہے اس کی بات کیا. یہ جیو کی پریایوں کے بھید ہے, انیہ درویوں کی پریایوں کے نہیں. یعنی گنستان اکیلے کون سے دروے میں ہوگا؟ جیو دروے. پودگل دروے میں گنستان نہیں ہوگا. جیو میں بھی انت گنوں میں سے ماتر شردھا اور چارتر گن کی پریائے انوسار گنستانوں کے بھید ہوئے ہیں. کیا क्या कहते हैं, ये हमने देखा ना, ये मात्र जीव में ही होते, गुणस्थान जीव में ही होते हैं, पुद्गल में नहीं होते। जीव में भी अनंत गुणों में से, हमने देखा था प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण है। जीव द्रव्य में कितने हैं और मुझ में, हर एक में, अपने अपने में अनंत है ना। तो किसी के पास कुछ भीख मांगनी पड़ेगी पुद्गल के पास जाकर, कह रहे मुझे सुख दो, कि जिसके पास सुख नाम का गुण ही नहीं है उस पुद्गल में से सुख आता है, ऐसी हमारी मान्यता है कि नहीं वो देखना। तो ये अनंत गुणों में से केवल मात्र लिखा ना, श्रद्धा और चारित्र गुण की पर्यायानुसार गुणस्थानों के भेद हुए हैं। सिद्ध जीव गुणस्थानातीत है, यानी गुणस्थानों के पार है, और सभी संसारी जीव किसी ना किसी गुणस्थान में पाए जाते हैं। यानी गुणस्थान किसके भेद है, कौन से जीवों के, तो सभी संसारी जीवों के। यानी जो अनंत जीव है उसमें से सिद्ध जीव अलग निकाले, और बचे हुए सारे संसारी अरिहंत से लेकर सारे, तो उन सारों को एक बाजू लेकर उनमें हमने गुणस्थान के अलग अलग भेद बताए हैं। हमें गुणस्थान के अभ्यास में प्रवेश करना है, गुणस्थानों में नहीं। तो हम किसी न किसी गुणस्थान में अभी होंगे कि नहीं होंगे, कि हमको अभी प्रवेश करना है गुणस्थानों में, कब से है? अनादि से ही हम किसी न किसी गुणस्थान में हैं। अनादि से तो मिथ्यात्व, जब सम्यक को प्राप्त करता है तो जो कोई गुणस्थान होगा, चौथा पांचवा छठा सातवा, उसमें जाते हैं, फिर दोबारा मिथ्यात्व में आएंगे, फिर मिथ्यात्व गुणस्थान। परंतु ऐसा कभी नहीं हुआ कि गुणस्थान के बिना ये जीव था। गुणस्थान के बिना कब हो सकता है? जब अरिहंत अवस्था पार करके सिद्ध भगवान हो जाएंगे तब। तो सिद्धों को छोड़कर सारे ही जीव किसी न किसी गुणस्थानों में है। अनादिकाल से सभी जीव सर्वप्रथम मिथ्यात्व गुणस्थान में होते हैं। यह पहला गुणस्थान है, इसका प्रथम स्थान है, इसलिए इसे अच्छा मत मानना। पहला हमेशा पहला नंबर है ना, तो यहाँ भी पहला नंबर हो तो उसे अच्छा नहीं मानना। यह तो बादशाही यानी राजशाही गुणस्थान है, यहाँ मोह राजा का हुक्म चलता है। इन जीवों की जिनेन्द्र कथित प्रयोजनभूत तत्व संबंधी, कितने हैं प्रयोजनभूत तत्व? हाँ दीपाली, प्रयोजनभूत तत्व कितने हैं? हाँ सात तत्व। हाँ सात तत्व को ही प्रयोजनभूत तत्व कहते हैं। प्रयोजन, हमारा प्रयोजन क्या है? हर एक का सुखी होना। वो सुख कहाँ है? परिपूर्ण सुख मोक्ष दशा में, यानी मोक्ष प्रकट करना, यही हमारा प्रयोजन है। तो उसके लिए जिन जिन तत्वों को जानना आवश्यक है, और जिनको जाने बिना ये मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं होगा और हम सुखी नहीं होंगे, हमारा दुख दूर नहीं होगा, उसको कहते हैं प्रयोजन भूत तत्व। क्योंकि हमारे प्रयोजन जो सुख है उसके लिए ये कार्यकारी है, इसलिए इसको प्रयोजन भूत कहा है। तो जो जिनेन्द्र कथित चाहिए, क्योंकि सब धर्मों ने अपने अपने प्रयोजन भूत तत्व बताए हैं। वे कहते हैं हमारे ये इसे तत्व सीखो तो आपको मुक्ति मिल जाएगी, इसलिए यहाँ एक कंडीशन डाल दी कि जिनेन्द्र कथित होना आवश्यक है। क्यों जिनेन्द्र कथित? हाँ वो सर्वज्ञ है, इसलिए पूरा जानते हैं, और वीतराग होने से बिना कोई राग द्वेष के वो पूरा का पूरा सारा मोक्ष मार्ग का स्वरूप बता देते हैं। इसलिए जिनेन्द्र कथित प्रयोजन भूत तत्व संबंधी मिथ्या मान्यता होती है, विपरीत मान्यता होती है। किसकी? मिथ्या तो गुणस्थान, जो पहला गुणस्थान है मिथ्या तो नाम का, उसमें उनको ये प्रयोजनभूत तत्व संबंधी उन्हें विपरीत श्रद्धा है। नाम सुने नहीं है, ऐसा बात नहीं है। बंध आश्रव बंध संवर निगरा नाम तो सुने, मोक्ष का भी नाम सुना है, परंतु उसके बारे में उनकी विपरीत श्रद्धा चलती है। अभी उसके बारे में यहाँ नहीं लूंगी, ये तो प्रयोजनभूत तत्व संबंधी जो विपरीत मान्यताएं है, आप इसमें से पढ़ लेना, उसको तत्व परिचय पुस्तक है ना, अंत में उसके जो प्रयोजनभूत तत्व संबंधी मेरे ख्याल से 9 लेख है उसमें, तो उसमें से विपरीत मान्यता कैसी कैसी है ये पढ़ लेना आप। इसी को अतत्व श्रद्धान कहते हैं। सम्यक दर्शन को क्या कहते हैं? तत्वार्थ श्रद्धानंद सम्यक दर्शन, उसकी परिभाषा है ना सम्यक दर्शन की। और मिथ्या दर्शन, मिथ्या दृष्टि जीवों को क्या होता है? अतत्व श्रद्धा, और यानी उसको तत्व का श्रद्धा नहीं होता या विपरीत होता है। प्रयोजनभूत तत्व संबंधी विस्तृत विवेचन हमने पहले पुस्तक जैन तत्व परिचय में यहाँ लिखा ही है, नौ लेखों द्वारा किया ही है, याद है ना। मिथ्यात्व गुणस्थान वाला जीव, अब ये मिथ्यात्वी जीव की मान्यता क्या क्या चलती है उसकी यहाँ चर्चा करेंगे। तो अपने में मान्यता होगी और ये गलत है ऐसा पता चलेगा तो छूट जाएगी। तो मिथ्यात्व गुणस्थान वाला जीव प्राप्त शरीर में ही यह मैं हूँ मानता है। ये मूलभूत उसकी, जिसको कहते हैं ना कि जिस जिस पर्याय में जाता है उस पर्याय को अपने रूप मान लेता है, इसको कहते हैं पर्याय बुद्धि। ये एक समय की ज्ञान के पर्याय में उसकी कोई पर्याय बुद्धि नहीं हो रही है। कौन सी पर्याय? ये जो असमान जातीय द्रव्य पर्याय कहते हैं इसको, एक जीव और अन्य कितने द्रव्य है यहाँ पर? अभी आपको कितने पता लग रहे हैं? मन एक ही पुद्गल है पूरा मिलकर, कितने परमाणु है यहाँ? अनंत, यानी एक जीव और अनंत पुद्गल परमाणु, इनका मिला जुला जो अभी उनकी संयोग रूप जो अवस्था हो रही है वो पूरा का पूरा मैं है। देखो कोई दूसरे की चीज उठा के लाए या अपनी माने तो उसको क्या कहते हम? चोर। और ये अनंत वस्तुओं को मैं हूँ मानता है तो कैसा हुआ? महाचोर हो गया ना। तो देखो कि यह मैं हूँ मानता है, सच्चे देवगुरु शास्त्र का स्वरूप वह नहीं जानता। तो ये देव के बारे में, गुरु के बारे में, शास्त्र के बारे में सारी उसकी मिथ्या मान्यताएं, विपरीत मान्यताएं चलती है। जो देव नहीं है, जो कुदेव है, उसी को देवपने से मानता है। तो गुरुओं में ये गुरुपने की उसको बुद्धि हो जाती है, ये तो हमने डिटेल में देखा है सारा। कुल परंपरा से वह उनको मानता है। अभी कोई सच्चे देव को ही पूछता है कि वितरागी भगवान के अलावा अन्य किसी को नमन नहीं करता, उनकी पूजा नहीं करता, उनके मंदिरों में भी नहीं जाता, उनकी तरफ देखता भी नहीं आदर बुद्धि से, फिर भी कैसे करता है? ये कुल परंपरा से, उसमें उसको निर्णय नहीं है कि ये क्यों सच्चे हैं। तो कुल परंपरा से उनको मानता है, उनकी भूजा भक्ति करता है। तो इसको भी शास्त्र में गृहित मिथ्या दृष्टि कहा है। देखो यानी चुभ जाए अपने को ऐसी बात है कि जन्म से बचपन से लेकर इसने अन्य कुदेवों की भक्ति भी नहीं की है और पूरा चुप तरीका है कि सच्चे देवशास्त्र गुरु बिना अन्य किसी को नमस्कार नहीं करेगा, फिर भी हम क्यों नमस्कार करते हैं इसका पता नहीं है। उनका स्वरूप क्या है इसके बारे में उसको पता नहीं। शुभराग यानी पुण्य कार्य करने से मोक्ष की प्राप्ति होगी मानता है, इसलिए वो अधिक से अधिक शुभराग करना चाहता है। गृहस्थ अवस्था छोड़ देता है, कपड़े का त्याग कर देता है, वस्त्र का, मुनि दीक्षा अंगीकार करता है, फिर भी ये जो मान्यता है शरीर मैं हूँ, शरीर की क्रिया मैं करता हूँ, ये राग यानी पुण्य करने जैसा है और ये करते करते मुझे मोक्ष प्राप्त होगा, ये मान्यता पड़ी। कुछ लोग कुदेव कुगुरु कुशास्त्र का सेवन करते हैं अर्थात उनकी भक्ति पूजा आदर करते हैं, उनके उपदेश का विश्वास करते हैं, उन्हें गृहित मिथ्यात्व होता है। गृहित यानी नया ग्रहण किया हुआ, और अगृहित यानी जो अनादि से ही चला आ रहा है बिना किसी के सिखाए, जो चींटी में भी होगा, पेड़ पौधों में भी होगा, कोई भी जो एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय जीव, तो प्राप्त शरीर में यह मैं हूँ ऐसी जो उनकी बुद्धि पड़ी है तो ये उसकी अनादि की जो अगृहित मिथ्या मान्यता। कुछ लोग अरियंतों की भक्ति पूजा करते हैं परंतु बाह्य प्रतिमा और शरीर आदि में ही उन्हें पूज्य भाव होता है। तो यात्रा करके आए तो क्या देखते हैं वहाँ? ये मूर्ति का कलर कौन सा था, वो नाक कैसा था, वो हसरी थी मूर्ति, ठीक है ना, कितनी हंसमुख है, तो कौन सा कैसा है बाकी अभी उसने मूर्ति में हास्य कैसा है मान लिया तो अर्थात उससे रहित नहीं हुए। तो पूज्य भाव होता है। अरिहंत के आत्मिक गुणों, उनकी वितरकता एवं सर्वज्ञता को वे पहचानते नहीं है। हम अरिहंतों को, गुरु को जो नमस्कार करते हैं, वो उनके वितरकता के कारण, उनके विज्ञानता के कारण करते हैं। वे लोग मंदिरों और तीर्थ क्षेत्रों में जाते हैं, परंतु भगवान की प्रतिमा का पाषाण, बाह्य आकार, चेहरा, विभूति और चमत्कार युक्त अतिशय, तो यहाँ पर क्यों जाते हैं? हाँ, वो चमत्कारी बाबा है, अतिशय क्षेत्र है, अपना भी कुछ भला होगा। क्या भला होगा? भला कहाँ हम गिनते हैं, कुछ संयोगों की प्राप्ति में भलापन मानते हैं, तो अपना भला किसमें, इसको ही हम पता नहीं है। मैंने सुनते हैं कि हाँ वो कोई अतिशय क्षेत्र है, वहाँ ऐसा ऐसा अतिशय बना है, तो इसको ऐसा लाभ हुआ, उसको वैसा लाभ हुआ, तो बहुत चलता है। महावीर जी में जाओ तो बच्चा हो जाएगा, वो तो बाल ब्रह्मचारी भगवान, क्यों? और बच्चा होगा तब छत्र चढ़ाएंगे, ऐसी मान्यता है, होती है बहुत। ऐसे अलग अलग भगवान के, शांतिनाथ भगवान शांति देंगे, और कोई शांति देने में समर्थ नहीं है। ये तो हमने अपनी बुद्धि से ऐसी मिथ्या मान्यताएं बना लिया। वो शीतलनाथ भगवान, वो पता है ना, समय शिखर पर शीतलनाथ की टोंक है, उसके समय इतना ऐसा सामने गड्ढा था, हमने देखा, तो क्यों? तो लोग यहाँ की मिट्टी ले जाते हैं। हाँ, तो कोई शीतला या कोई माता का बीमारी होगी तो वो लगा देते हैं। ऐसे ऐसे कोई मनगढ़ंत, कोई एक ऐसा निकाल लेता है, जिसको कहते ना कोई टू ऐसी निकलती है, तो सब पागल की पीछे उसके पीछे चल जाते हैं। तो चमत्कार युक्त अतिशय, इन पर ही उनका ध्यान जाता है, उसमें ही उन्हें रुचि होती है। कुछ लोग बाह्य दिगंबर वेश को ही मुनि का स्वरूप मानते हैं, परंतु उन्हें मुनि के अंतरंग स्वरूप का, अकषाय भाव का, वितरकता का ज्ञान नहीं होता। आगम कथित यानी आचार शास्त्र, अभी हमने देखे ना इतने इतने अंगों के आचारांग जो लिखा था हमने, तो आचारांग में मुनि के आचरण का सारा स्वरूप बताया था सर्वज्ञ भगवान ने। अभी हम तक जो चलते आए, अभी तो श्रावकाचार बहुत सारे ग्रंथ उपलब्ध है, भगवती आराधना है, रत्नगण श्रावकाचार में तो मुख्यतः श्रावक की बात है, परंतु मुनि के आचरण संबंधी भी वो अनगार धर्मामृत वगैरह ऐसे सारे, लाठी संहिता है, कुशा सुधि उपाय है, बहुत सारे जो आचार संबंधी ग्रंथ है, तो उसमें सारा मुनि का आचार कैसे होता है उसका वर्णन आता है। तो आचार शास्त्र में कहे अनुसार योग्य आचरण अर्थात 28 मूल गुणों का पालन करने वाले, ये तो बाह्यता हुई, तो अकेले इससे मुनिपना नहीं होता, तो उसके मुख्य क्या होना चाहिए उसके साथ साथ, तो तीन कषाय चौपड़ी के अभाव पूर्वक वितरकता, यानी बिना वितरकता कोई मुनि नहीं हो सकता, यानी सच्चा मुनि ही नहीं है वो। अंतरंग में वितरकता और बाह्य में 28 मूल गुणों का निरतिचार पालक, निरतिचार यानी उसमें कोई भी अतिचार नहीं लगे, कोई भी दोष नहीं लगे, ऐसे बाह्यता उनको वो पालन करने का भाव, वो शुभ भाव उनका, और उस समय शरीर की भी वैसी क्रिया होना, ये सारा एक साथ होता है। ऐसे नहीं कि उनको भाव तो बहुत है परंतु क्या करे, शरीर की क्रिया उल्टी चल रही है, कि शरीर ऐसा वो चल रहा है कि हम क्या करें, वो शरीर चलता है और हिंसा होती है, ऐसा वो अनाचार नहीं होता वहाँ, तो जैसा हाँ सबका ऐसा सुमेल रहता है, जितनी वितरकता वैसे वैसे उनके परिणाम, शुभ परिणाम है ना 28 मूल गुण पालन करने के, वो भी वैसे और शरीर की क्रिया भी उसके अनुरूप, ये सारों को मिलकर हम मुनि दशा कहते हैं। इस बात का उन लोगों को ज्ञान नहीं है, ऊपर कहे अनुसार जिनका स्वरूप नहीं है उनसे सच्चे मोक्ष मार्ग का उपदेश प्राप्त होना शक्य नहीं है, क्योंकि हमें क्या लेना देना वो सच्चे क्या खोटे है, तो हमें तो मोक्ष मार्ग का उपदेश चाहिए, उपदेश चाहिए एक बात, और अपने मन में हमको मोक्ष मार्ग प्रकट करना है, तो मोक्ष मार्ग प्रारंभ से अंत तक कैसा होता है, जो मोक्ष मार्ग में आरूढ़ है, चौथा गुणस्थान वाला जीव, पांचवा, छठा, सातवा और श्रेणी वाला और ऊपर अरिहंत भगवान तक के, उनका स्वरूप कैसा है ये पूरा पूरा पहले मालूम होना चाहिए। तब सम्यक दर्शन प्राप्त करने के पहले पूरे मोक्ष मार्ग की पहचान होगी तो ही सम्यक दर्शन होगा। हम कहीं जाना है अमेरिका में तो पूरा मार्ग की पहले पहचान कर लेते हैं ना, कहाँ जाना, कैसे जाना, उस जाने के पहले क्या करना पड़ता है। चल हम कल जाएंगे अमेरिका तो नहीं जाना, नहीं मिलेगा, पहले पासपोर्ट निकालो, फिर वो वीसा का एप्लीकेशन करो, फिर वहाँ जाओ, उसका ये सारा झंझट जो है, वो कैसे जाना, कहाँ टिकट निकाला, कहाँ वो बीच में स्टॉप होता है, वहाँ वो कहाँ कौन लेने को आएगा, ये सारी बातें पहले निश्चित करना पड़ता है। वैसे यहाँ मोक्ष मार्ग में हमें चलना है तो मोक्ष मार्ग प्रकट करने के पहले पूरे मोक्ष मार्ग संबंधी ज्ञान होना आवश्यक है। इसलिए सच्चे देव गुरु और शास्त्र का स्वरूप हमारे ज्ञान द्वारा हम निर्णय करना आवश्यक है। किसी व्यक्ति को हमें जांचना नहीं है वहाँ जाकर कि अभी समाज में कितने कैसे मुनि है और वो क्या क्या गलतियाँ करती, इसके लिए इसको नहीं जानना है। हमें मोक्ष मार्ग प्रकट करना है तो ये मुनियों का स्वरूप, ये देव का स्वरूप, ऐसा हम जब निश्चित करेंगे। क्योंकि हमने देखा था कि सम्यक दर्शन की एक परिभाषा रत्नकरण शावकाचार्य में क्या आई थी मालूम है, ये तत्वार श्रद्धानंद सम्यक दर्शन तो हमने कहाँ सीखा, मोक्ष शास्त्र में, तत्वार सूत्र में। और रत्नकरण वालों ने क्या कहा है, नहीं यार हम पढ़े वहाँ तो ऐसा कहा है, सत्यार्थ आप्त, आगम और तपोवृत, इनका जो तीन मूर्ता रहित ऐसा जो श्रद्धान है उसको सम्यक दर्शन के। आप पढ़ना आज शाम को फिर इसमें ऐसा श्लोक है, श्रद्धानम परमार्थानाम आप्त आगम तपोवृतां त्रिमूढ़ा पूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शनम अस्मे, यानी तीन मूर्ता रहित आठ अंग सहित ऐसा जो सम्यक दर्शन है। और दोनों का अर्थ भी एक ही है, देव गुरु शास्त्र का श्रद्धान कहो या सात तत्वों का श्रद्धान कहो, क्यों एक जैसा है। हाँ हाँ तो कौन से तत्व में कौन से का किसको लेना, हाँ देखो ऐसा कहना चाहिए, गुरु नहीं लेना, गुरु को डायरेक्ट नहीं लेना, गुरु की श्रद्धा को लेना और यहाँ संवर निर्जरा की श्रद्धा को लेना, यानी संवर तत्व और निर्जरा तत्व की जो श्रद्धा है और गुरु संबंधी जो श्रद्धा है वो एक ही है, और जो मोक्ष तत्व संबंधी की श्रद्धा और देव के स्वरूप संबंधी श्रद्धा वो सेम है, और शास्त्र की श्रद्धा ये सातों ही तत्व किसने बताए शास्त्र में, तो शास्त्र की श्रद्धा कहो या सात तत्व की श्रद्धा कहो, सातों तत्व एक ही बात है। यानी इसलिए हम गठित कर सकते कि देव शास्त्र गुरु को पहचाना या सात तत्वों को पहचाना, तो ये एक ही बात है। देखो क्या कहते कि उनके सॉरी ऊपर कहे अनुसार जिनका स्वरूप नहीं है, यानी जिन मुनियों का स्वरूप नहीं है, उनसे सच्चे मोक्ष मार्ग का उपदेश प्राप्त होना शक्य नहीं है, और उन्हें मानने पूजने से मिथ्यात्व की पुष्टि होती है, और मिथ्यात्व में से छूटने का मार्ग ही बंद हो जाता है, क्योंकि वो उन्हीं को सच्चा मानता है, तो सच्चा स्वरूप पहचानने से वो इनकार कर रहा है, क्योंकि जो सच्चा नहीं है, जैसे हम कोई भूले गए मार्ग भूल गए और गलत रास्ते पर चल रहे हैं और उसको सही रास्ता मानकर चल रहे, तो हमारे जो इष्ट स्थान है वहाँ कब पहुँचेंगे, हम पहुँच नहीं सकेंगे ना, क्योंकि हम उल्टे रास्ते से जा रहे हैं। तो इसलिए मार्ग सही है क्या नहीं वो हम कब कि वो बताने वाले कौन है उनका निर्णय भी पहले होना चाहिए। मिथ्यात्री जीव की सात तत्व संबंधी मान्यता विपरीत होती है, यानी सातों संबंधी मुख्यतः किसी एक तत्व की हमें पता चलेगा, परंतु उसमें सातों ही तत्वों की विपरीत मान्यता गर्भित है। उसके उसको क्या क्या होता है? तो परद्रव्यों में एकत्व बुद्धि, यानी शरीर ही मैं हूँ, एकत्व यानी वही मैं हूँ ऐसी मान्यता। ममत्व बुद्धि यानी यह मेरा है ऐसी मान्यता, शरीर है तो कोई कहता नहीं मैं तो भिन्न हूँ, परंतु ये मेरा है, ये घर मेरा है। यानी उसमें वो सम्यक दृष्टि भी कहेगा कि घर मेरा है, बच्चे मेरे है, परंतु उन दोनों के अभिप्राय में, मान्यता में अंतर है। क्योंकि कथन तो वही आएगा, कथन में कोई अंतर नहीं होता, परंतु कथन के पीछे कैसी मान्यता है वो अलग अलग होती है। ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, यानी परद्रव्यों का कार्य मैं कर रहा हूँ, शरीर ये तो मैं ही बोल रही हूँ, ऐसा मानते ना, मैं नहीं तो कौन, आप बोल रहे हैं, तो ये जो बोलने का कार्य चल रहा है तो इसमें अन्य परद्रव्यों की क्रिया चल रही है, शरीर की हालचाल हो रही है और भाषा वर्गना शब्द रूप परिणमित हो रही है। जीव ने क्या किया, जीव का योग और उपयोग जुड़ा उसका, बस उपस्थित है, उसने शब्द में कुछ नहीं किया, फिर भी मानता क्या है, देखो मैंने इतना बोला, मैं अच्छा बोल रही थी, देखो मैं धीरे से बोलती, देखो मैं जोर से बोलती, ये उसमें उसको कर्तृत्व बुद्धि पड़ी है जीव। तो ये कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि, यानी मैं पर को भोगता हूँ, मैं ये अच्छा घर है, मैं इसका सुख भोगता हूँ, ये भोक्तृत्व बुद्धि पड़ी है इसके कार्य में। यानी वो ज्ञान कर रहा है ऐसा नहीं मानकर, मैं परद्रव्यों को भोगता हूँ ऐसा मानता है। निमित्त उपादान संबंधी यथार्थ ज्ञान न होने के कारण उसकी निमित्ताधीन दृष्टि होती है, यानी निमित्त से ही कार्य होता है ऐसा पक्का मानता है। इसलिए जब जब सम्यक दर्शन की बात आती है तब तब पहले ये निमित्त उपादान संबंधी चर्चा करते हैं। अरे निमित्त जानकर सम्यक दर्शन कैसा होगा, क्योंकि अभी मान्यता पड़ी है ना कि निमित्त से कार्य होता है, ज्ञेय है सामने इसलिए मुझे ज्ञान होता है, ये सारी निमित्ताधीन दृष्टि है और ये बहुत डीप रूटेड है, सामने नहीं आएगा तो हम जान ही कैसे सकेंगे। यानी वो ज्ञान अपने ज्ञान गुण में से पर्याय प्रकृति है ऐसा नहीं मानकर परद्रव्यों में से आती ऐसा माना, यानी स्व संबंधी ज्ञान और पर संबंधी ज्ञान वो अपने मन से आ रहा है। सामने टीवी पर कोई बांसुरी बजा रहा है वो, और उसने तो कितनी मेहनत की है सालों से, और हम क्या करते हैं बैठे बैठे जान लेते हैं, तो जानने में कितनी मेहनत की, और ये सारा कहाँ से आता है, उसमें से आता है ना, यहाँ वो संगीत का आवाज सुनकर यहाँ ज्ञान होता है ना, क्या होता है यहाँ से होता है, और ऐसा कभी लगता है यहाँ से हो रहा है, नहीं होता है, अभी लगेगा सुनो के तो निमित्त उपादान संबंधी यथार्थ ज्ञान न होने के कारण उसकी निमित्ताधीन दृष्टि होती है। शरीराश्रित क्रिया और राग भाव को, दोनों को लिया, एक तो शरीर की क्रिया परद्रव्य की क्रिया, और राग भाव तो अपने में हो रहा है, तो ये राग भाव को अपना कार्य मानता है और उनमें एकत्व करता है, ये विभाव भाव है ना, तो उसी को अपना स्वरूप मानता है, करने जैसा मानता है, वो करना नहीं करने की बात नहीं है, अच्छा अच्छा अभी हम राग भाव छोड़ देंगे ने? हम करते थे परंतु अब छोड़ेंगे, यानी वो छोड़ना भी हमारे हाथ की बात है ऐसे मानता है, यानी विभाव भावों का भी कर्ता मानता है। ये सारा अज्ञान अवस्था में होता है, ज्ञानी को भी आते हैं परंतु वो अपने से भिन्न उनको पहचान लेता है कि हमारे में हाँ इतना राग भाव भी मौजूद है, इसका ज्ञान है उनको, यदि ज्ञान नहीं होता तो अपने को पूर्ण वितरागी मान लेते, तो कितनी वितराग पैर कितना भी राग बाकी उसका उनको अंदाजा है ना महत्व, उनमें एकत्व करता है। शास्त्राभ्यास करने पर भी कई लोगों का मिथ्या तो छूटता नहीं है, ये सातवें अधिकार में मोक्ष मार्ग प्रकाशक थे पंडित टोडरमल जी ने ये सारा लिया है कि शास्त्र अभ्यास करने वालों को भी कहाँ कहाँ मिथ्या तो पड़ा है, उसकी बात बहुत विस्तार से की उन्होंने। कुछ लोग शुभ कार्य यानी देव पूजा दया दान स्वाध्याय करने में संतोष मानते हैं, परंतु शुद्धात्मा की रुचि पूर्वक आत्म सन्मुखता का पुरुषार्थ उनके नहीं होता। बहुत से हम देखते हैं समाज में लोग कि बहुत चुस्त होते हैं कि देव दर्शन किए बिना वो पानी का बूंद भी नहीं लेते मुंह में, और बिल्कुल बारीकाई से सारी क्रियाएं करते हैं, और बहुत भक्ति भी है उन्हें देव शास्त्र गुरु के प्रति, फिर भी उतना ही संतोष मानकर बैठ जाते हैं। इन्हें आत्मा को जानना चाहिए, पहचानना चाहिए, और इसी में मेरा कल्याण है, ये भावना ही उनके ऐसे विचार ही उनको नहीं आता है। देखो क्यों ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अब भी मान्यता में कहीं खोट रह जाती है। कुछ लोग शुद्धात्मा के विकल्प में ही संतोष मानकर स्वयं को पर्याय में शुद्ध मानते हैं। शास्त्र में आता है ना, मैं शुद्ध हूँ बुद्ध हूँ, तो ऐसा वो तो रटता रहता है मुंह से नहीं, परंतु मन ही मन में ध्यान के बहाने क्या होता है कि वहाँ ये जो शास्त्र में पढ़ा है उसी को दोहराता है। तो उसको दोहराना वो तो स्वाध्याय हो गया, वो ध्यान नहीं है। जानना है शुद्धात्मा को, मैं शुद्ध हूँ ऐसा जो कथन है, ऐसे जो अंदर से कोई जो अंतर जल पे जिसको कहते हैं बहिर्जल पे ने जोर से बोलना, और अंतर जल पे नहीं ऐसा ही अंदर ही अंदर चलता है ना, हमारा मंथन चलता है मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ वैसा हूँ, ये जो ऐसा हूँ वैसा हूँ जो है शास्त्र संबंधी, कि मैं शुद्ध हूँ, मैं त्रिकाल हूँ, मैं एक रूप हूँ, मैं ज्ञायक भाव हूँ, ये सारा ही अंतर जल पे कहलाता है। तब तक तो अभी आत्मानुभूति नहीं है, आत्मा संबंधी विकल्प है, आत्मा संबंधी ये सोच रहा है। सोचना अलग बात है और एक्चुअल अनुभव बात अलग है। जैसे आम आपको लाना है तो आप बहुत सोचते आज मैं ऐसे आम लाऊंगी, ये वो हरा ऐसा बहुत पीला होना चाहिए, रस अच्छा होना चाहिए, वो मीठा होना चाहिए, फिर जाके लाया सामने रखा, फिर उसके संबंधी आप सोचते ही रहोगे ना, ये ऐसा है वैसा है वैसा है, तब तक अनुभव होगा कि नहीं होगा? तो क्या करना पड़ेगा? हाँ खाओ। तो वैसे यहाँ शास्त्र में आता है जान, गाथा में भी है, इसको तू जान, जान है ना, उसको भी जानो, उसके संबंधी अभी विचार करने के हो गया, वो विचार करने की भूमिका अभी टल गई, अभी उसको जानो तो सही। यानी इतनी सारी मेहनत की और अभी जानने मात्र का रह गया, तो जानो तो सही। हम कहते हैं वो तो खाली थाली पिरोस देते हैं, देख के चले जाते कि खाते भी है, हा? बहुत अच्छा सारे पकवान बना लिए तो देखकर ही खुश हो जाते होंगे, और वहाँ तो खाने को बराबर वो तो सिखाना नहीं पड़ता। तो अभी इतना तो सारा आत्मा की महिमा हमने सुनी, तो सुनने से कुछ काम नहीं चलेगा, उसको जानो। वो कैसा जानना क्या जानना वो सारा हो जाएगा ऑटोमेटिक। पहले तो अभिप्रायों में जहाँ जहाँ कुछ खोट रही है वो अभिप्राय बदलते ही ये सारा सहज हो जाएगा। देखो कुछ लोग शुद्धात्मा के विकल्प में ही संतोष मानकर स्वयं को पर्याय में शुद्ध मानते हैं। मैं शुद्ध हूँ बुद्ध हूँ, ये तो हमें बहुत बारीकाई से पंचाध्याय में अभी कथन आ रहा है। मैं शुद्ध हूँ किस अपेक्षा से? सामान्य की अपेक्षा। नव तत्व रूप जो है, पर्याय रूप जो है, उसी को अशुद्ध कहा, और जो उसमें जो सामान्य तत्व है जो कभी अशुद्ध आज तक हुआ ही नहीं अनादि से, तो उसको शुद्ध कहा, और उस शुद्ध की दृष्टि करनी है और उसको उस रूप अपने को अनुभव करना है। जैसे आईने को आपको देखना है तो आईने के एक एक इंच में पूरे के पूरे प्रतिबिंब है कि नहीं, किसी न किसी चीज के वहाँ प्रतिबिंब पड़े हुए हैं, तो बिना प्रतिबिंब का वहाँ कहाँ आईना दिख रहा है आपको? फिर भी आईने को देख सकते कि नहीं देख सकते? ये मिरर है, ऐसे आप कैसे जाना आपने? हाँ, जहाँ प्रतिबिंब है वही तो मिरर है, वो मिरर के बाजू में उसकी वो हाँ फ्रेम को तो हम मिरर नहीं मानते, वो तो निर्णय करते। क्यों? क्योंकि वहाँ प्रतिबिंब नहीं आ रहा है। तो जहाँ जहाँ वो प्रतिबिंब है वही तो मिरर है। वैसे जहाँ ये नव तत्व रूप जीव की पर्याय है वही तो वही उसका सामान्य है, और उस सामान्य को पकड़ना है तो उसको पर्याय को जरा हटा देंगे ना बाजू में वो प्रतिबिंब को हटाते नहीं जब हम आईने का निर्णय करते, मिरर, जब हम मिरर की दृष्टि से उसकी तरफ देखते हैं तो प्रतिबिंब ओझल हो जाते अपने नजर से, क्योंकि हमारी दृष्टि में फेर है, अभी हम अलग नजरे से देख रहे हैं। वैसे अपनी ओर भी अलग नजर से देखना है, उसी को द्रव्य दृष्टि कहते हैं। पहले तो पर्याय की तरफ से देख रहे थे, पर्याय रूप देख रहे थे, अब पर्याय को नजर में हमारे ओझल कर देना है। वही रहेगी, वो वहां से हटेगी नहीं, परंतु अभी उसका ध्यान नहीं कर सामान्य की दृष्टि कर, तो अपने को सामान्य रूप अनुभव में आ जाएगा और वही उसी को सम्यक दर्शन करते। इन दोनों प्रकार के जीवों को तत्व ज्ञान का मर्म ही नहीं समझा है, यानी जो दया दान में ही पूजा में ही संतुष्ट होते हैं और ये शास्त्र स्वाध्याय करके खाली अपने को मैं शुद्ध हूँ बुद्ध हूँ मान लेते हैं। निश्चय न और व्यवहार न के कथन का संतुलन यानी बैलेंस और मर्म उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है। यही सातवें अधिकार में बात की है, कोई निश्चयाभासी है कोई व्यवहारभासी है। अनादिकाल से एक के बाद एक अनंत भव हमने धारण किया। देखो अभी हम मनुष्य भव में है, तो इसके पहले थे कि नहीं, उसके पहले ऐसे कितने भव पहले जाना पड़ेगा, अनंत भव हमने देखे थे, पांच परावर्तन ऐसे अनंत बार किए हमने, क्योंकि कोई आदि है ही नहीं काल के लिए। तो इसे जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ, हम तो थे तो अनादि से जन्म मरण, अभी एक मरण सामने दिखा तो हम कितने भयभीत हो जाते, और ये अनंत काल से कितने जन्म मरण करते आए। वो मरण का भय इतना नहीं लगता कॉकरोच जितना। और हम क्या सोचते, हमने बहुत तरक्की की, कुछ नहीं, वही के वही पड़े। नहीं, जब तक अपना मूल स्वरूप नहीं, जीव की पहचान नहीं होगी, तब तक वो गधा बनो देव बनो या नारकी बनो या मनुष्य, उसमें कोई अच्छा बुरा नहीं है। अपने को पहचाना जिस भाव में वो अच्छा समझो, तो प्राप्त पर्याय जितना ही हमने स्वयं को माना, इसलिए प्रवाह की अपेक्षा मिथ्यात्व को अनादि का बताया है, प्रवाह की अपेक्षा लिखा है। और एक समय की अपेक्षा क्या कहेंगे मिथ्यात्व को, ये मिथ्यात्व अनादि है ऐसा हम कहते हैं ना, तो हर समय मिथ्यात्व अनादि का है। अभी एक एक समय के पर्याय है ना मिथ्यात्व के, कितने समय टिकेगी, एक समय, फिर दूसरे समय और मिथ्यात्व, तीसरे समय और मिथ्यात्व, तो एक एक पर्याय को क्या कहेंगे हम, सादि शांत, यानी जिसको आदि है और जिसको अंत है, क्योंकि एक एक समय का है। तो प्रवाह अनादि का है इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, तो उसको नाश करने के लिए फिर और अनादि काल जैसे अनंत काल जाएगा इसी बात नहीं है। अभी एक कोई गहरा अंधेरे वाला ऐसा कोई गुफा है तो उसमें बहुत काल से अंधेरा पड़ा है, अनादि से समझ लो, और वहाँ प्रकाश करना है कितना समय लगेगा, पहले सारा अंधकार अनादि का निकालना पड़ेगा ना, नहीं तो हाँ वो बैटरी ऑन करो या माचिस जला, तो जलाते ही वहाँ प्रकाश हो जाएगा, अंधकार को निकालने की जरूरत नहीं है। अंधकार को निकालने के लिए अंधकार की तरफ देखना है ना, वैसे मिथ्यात्व को देखो मत, अभी सम्यक तो प्राप्त करो। तो ये अपने हाथ की बात है, अनादि है इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। तो प्रवाह की अपेक्षा अनादि का है। पंडित दौलत राम जी छड़ाला में कहते हैं कि मोह महामद पियो अनादि, महामद मद यानी यह मदिरा, कैसी मदिरा है वो, महामदिरा है, महामद्य है, तो मोह रूपी मदिरा है, कहते नहीं कि वो बहुत स्ट्रांग है अल्कोहल, तो क्या करते हैं बहुत काल तक उसका इफेक्ट रहता है, दारू किसी ने पी तो नशा उसको चढ़ गया, और जब नशा उतरने के पहले और एक उसने डोज ले लिया, और उसको उतरने के पहले और पिया, वो उतरने के पहले और पिया, तो वो तो होश में आए, वो चलती रहेगी उसकी नशा। वैसे ये सम्यक तो पाए नहीं अभी, मिथ्या तो मिथ्या तो मिथ्या तो मिथ्या तो ही कर रहा है, कभी उसमें से बाहर ही नहीं निकला है, तो उसको कहते हैं महामद पिया है उसने। ये बाहर के मदिरा भी निकल सकती है उसके, नहीं नशा उतरेगा, कुछ कम भी होगा, परंतु मिथ्यात्व का नशा अनादि से चल रहा है। तो मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भ्रमतवादी, और अपने आप को भूल गया है। कहते कि मदिरा पीने वाला भी वो जानते हैं ना मैं कौन हूँ, कहाँ पड़ा हूँ, क्या अपने को कुछ भी मानता है, कुछ भी बकता है। वैसे ये भी मैं आज मनुष्य हूँ, मैं राजा हूँ, मैं इतना धनपति हो गया, ये अपने को कुछ भी बकता है। मिथ्यात्व का वर्णन सुनकर घबराने का कोई कारण नहीं है। मिथ्यात्व का अभाव करके सम्यक प्राप्ति का उपाय हमें जिन वाणी द्वारा उपलब्ध है, जिनेन्द्र भगवान की वाणी द्वारा हमें ये सारा उपलब्ध है। सर्वप्रथम सम्यक प्राप्ति की योग्यता किस जीव में होती है उसे देखते हैं। हमने ये रत्नकरण में पढ़ा था, कौन सा जीव सम्यक प्राप्त कर सकता है। तो पहले बताए चारों ही गति के, मनुष्य तिर्यंच देव या नारकी, कोई भी हो वो सम्यक प्राप्त कर सकता है, फिर भी उसमें तिर्यंचों में कुछ कंडीशन डालेंगे। तो संधि पंचेंद्रिय जीव होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य देव और नारकी तो संघि पंचेंद्रिय ही होते हैं, और तिर्यंचों में एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक सारी वैरायटी है। तो उसमें से सम्यक प्राप्त करने के लिए पात्र कौन है? संघि पंचेंद्रिय। भव्य जीव, अभव्य जीव सम्यक प्राप्ति नहीं कर सकता, इसलिए वो कंडीशन है भव्य जीव। मिथ्यात्व का अभाव करके, इसमें और भी ज्यादा बहुत सारी बातें थी कि वो पर्याप्त तो होना चाहिए, और याद है ना क्या क्या था? जागृत अवस्था, साकार वाला यानी साकार ज्ञान उपयोग वाला, मंद कषाई, ये हमने सारे डिटेल पढ़े थे। वो मिथ्यात्व का अभाव करके सम्यक्त्व की प्राप्ति कर सकते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि एकेंद्रिय से लेकर असन्नी पंचेंद्रियों तक के सभी जीव नियम से मिथ्यात्व गुणस्थान में होते हैं। हमारे पहले गुणस्थान का अभ्यास चल रहा है ना, तो पहले गुणस्थान वर्ती कौन कौन है तो बता देना। एक केंद्रीय से असंधि पंचेंद्रिय तक के सारे ही जीव मिथ्यात्व गुणस्थान में है, हा? नियम से। और बाकी तो संघि पंचेंद्रियों में भी जो जो चारों गति के जीव वो भी मिथ्यात्व या सम्यक्ति उसमें ऑप्शन होगी, और उन्हें सम्यक्त्व प्राप्ति की योग्यता भी नहीं होती है, उस पर्याय में उनको योग्यता नहीं है। वे सम्यक्त्व सहित भी नहीं है, और उस पर्याय में सम्यक्त्व प्राप्त भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो संघि पंचेंद्रिय नहीं है। संघी यानी मन सहित पंचेंद्रिय जीवों में भी पर्याप्त होना आवश्यक है। पर्याप्त यानी पूर्ण, अपर्याप्त यानी अपूर्ण। हमने पहले पर्याप्ति पढ़े थे, तो जब पर्याप्ति पूरी हो जाती है तो उसके बाद ही वो सम्यक्त्व प्राप्त करने के योग्य हो जाता है। पर्याप्ति संबंधी विवेचन बाद में करूंगी, तब अधिक स्पष्टता होगी। हमने तो पहले ही उसका प्रकरण लिया था, इसलिए भी आप तो जानते ही पर्याप्ति। अपर्याप्त जीव श्वास के 18वें भाग में मरते हैं। ये हमने देखा था ना, श्वास लेने क्या याद है क्या? हाँ, पल्स होती ना, तो उस दो ठक ठक के बीच वाला जो अंतर है उसको उसको नाड़ी कहते हैं, श्वास कहते हैं। वे अत्यंत अल्प आयु के धारक है। नौकर्मणा का ग्रहण करने पर भी वो नौकर्म ने आहार ग्रहण तो करते हैं, फिर भी उनसे शरीरादि बनाने का उनका कार्य पूर्ण नहीं होता, अधूरा ही रहता है। यानी उनको शरीर नहीं होता ऐसे नहीं कहा, वहाँ कुछ पुद्गल परमाणु वो शरीर रूप से ग्रहण भी कर लेते हैं, परंतु वो सारा कार्य उनका अधूरा रहता है, क्योंकि पर्याप्ति नहीं पूरी होती। तो ऐसा नहीं कि अपर्याप्त है, नहीं उस हाथ पैर वाला ऐसा अपर्याप्त मनुष्य होगा तो मूर्छन, तो आंख कान वाला ऐसा हाथ पैर वाला मनुष्य जैसा ऐसा कोई मनुष्य वहाँ पड़ा होगा ऐसी बात नहीं है। कुछ पुद्गल परमाणु ग्रहण करता है और वो अपर्याप्ति बनने के पूर्व ही मर जाता है। संघी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव को ज्ञान का इतना उघाड़ है कि वह अपने स्वरूप संबंधी उपदेश ग्रहण करता है। ये मन वाले संगी का लक्षण क्या है? के उपदेश का ग्रहण कर सकता है, मन के द्वारा उस पर विचार करता है, तत्व निर्णय करता है। देव गुरु शास्त्र मोक्ष मार्ग के विषय में परीक्षा प्रधानी होकर निर्णय करता है। ये निर्णय करना महत्व, अकेले सुनना ये कार्यकारी नहीं, सुनकर ये हाँ ये ऐसा ही है, ये सच है क्या झूठ है, ये हम अपने युक्ति द्वारा न्याय द्वारा लॉजिकली उसको हम सोचे और फिर एक्सेप्ट करें तो ये कार्यकारी है। शास्त्र में सम्यक्त्व प्राप्ति के कारणों और प्रक्रिया में 5 लब्धियों का स्वरूप कथन किया है। उनके नाम है क्षोभम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि। याद है ना? बोलो। करण लब्धि, लब्धि ने परिणामों के, ये कैसे कैसे परिणाम होते हैं जीव के, क्या क्या बातें होती है उसकी यहाँ चर्चा। मात्र ज्ञान का उघाड़ होना, ये तो आपने रत्नग्रंथ शाकाचार में भी इसको पढ़ा है, यहाँ तो शॉर्ट में ले लेंगे। मात्र ज्ञान का उघाड़ होना अर्थात तीक्ष्ण बुद्धि का होना क्षोभम लब्धि नहीं कहलाती, वह तो ज्ञान का क्षोभम है। बहुत कोई साइंटिस्ट होगा तो उनके पास तो ज्ञान का क्षोभम कितना है, उसको क्षोभम लब्धि नहीं कहा है। तो हमने देखा था ज्ञानावरणादि सारे कर्मों में वो उनकी जो कर्म की जो शक्ति है वो घटता चला जाता है सारे कर्मों में, तो उसको और विशुद्धि और क्षोभम एक साथ दिए थे, उसको क्षोभम लब्धि कहा था। यहाँ क्या लिया है, परंतु प्राप्त ज्ञान तत्व ज्ञान के अध्ययन में लगाना क्षोभम लब्धि है। तो ज्ञान हम कहाँ लगा रहे हैं, ये बात भी महत्व का है ना। अकेला ज्ञान इंटेलिजेंट होना कार्यकारी नहीं है, वो इंटेलिजेंस बुद्धि है वो किस में लगाते हैं, वो निर्णय करते हैं कि नहीं करते हैं, इस पर वो निर्भर है कि आगे सम्यक तो होगा कि नहीं होगा। क्योंकि सम्यक तो प्राप्ति के पहले की ये सारी बातें हम ले रहे हैं। सम्यक तो प्राप्ति के लिए दूसरी आवश्यकता है कषायों की मंदता का होना, अष्टमूल गुण का धारण करना। कौन से अष्टमूल गुण? 3 मक, हाँ 5 उदुम्बर पर इनका त्याग, अन्याय अनीति एवं अभक्ष भक्षण का त्याग। यानी वो नौकरों पर अन्याय करता होगा, या घर में बहू होगी उस पर अन्याय होता होगा, या कोई अपनी जेठानी देरानी उस पर अन्याय, या बच्चों पर, या किसी भी, या अनीति से कोई कार्य कर रहा है वो पैसे कमा रहा है और मुझे समय तो प्राप्त करना है तो नहीं बनेगा। तो अन्याय अनीति एवं अभक्ष भक्षण, अभक्ष भक्षण में तो ये लिया है ना हमने, मध्यमांस मधु का तो त्याग, और फिर उसमें रात्रि भोजन त्याग वगैरह, ये जो सारी बातें है इसको भी अभी व्यवहार समय दर्शन नहीं कहेंगे, ये हाँ त्रसघात बहुघात जो है, ये जो कंदमूल वगैरह, हाँ उसका त्याग। और सदाचार युक्त जीवन का होना पात्रता है, ये तो पात्रता है, सदाचार है। जैसे कहते ना कि जमीन में बीज बोते हैं तो उसके पहले उसके हल चलाते हैं, उसको क्या कहते हैं मराठी में, उसको मशागत कहते हैं। जमीन तैयार करते हैं ना, पहले वो जलाते हैं, फिर वो हल चलाते हैं, वो नरम बनाते हैं मिट्टी को, हाँ होली, और फिर उसमें बीज बोया जाता है। वैसे या ये पत्थर पर बीज नहीं बोते हैं, वैसे ये परिणामों में जब इतनी सरलता होगी, इतनी मृदुता होगी, तभी वहाँ धर्म का बीज जो सम्यक तो है वो प्राप्त, वो बोया जा सकता है और फिर वहाँ मुक्ति का मार्ग प्राप्त हो सकता है। इसे विशुद्धि लब्धि कहा है। कषायों की तीव्रता में जीवों को जिनवाणी का उपदेश रुचता नहीं है, ये सभी लोग नहीं तो आ जाते हैं सारे क्षोभम अच्छा वाले, उनको रुचता नहीं है, पचता नहीं है और समझता नहीं है। पचता नहीं है ना, किसी को वो सुनकर भी एलर्जी हो जाती है ना, गुस्सा आ जाता है, हाँ बहुत, हाँ यानी कषाय तीव्र हो जाते हैं उनके। और समझता नहीं है, यानी जिसके इसमें रुचि नहीं है उसको ये बात समझ में भी नहीं आती, और जिसको रुचि होगी वो तो झट समझ लेगा। वास्तव में जीव उस उपदेश की ओर मुड़ता भी नहीं है, दूर से ही टाल देता है। गृहित मिथ्यात्व अर्थात कुदेव कुगुरु कुशास्त्र का त्याग भी अत्यावश्यक है। यानी कुदेवादि की मान्यता बनी रहे और सम्यक दर्शन होगा ऐसा तीन काल में नहीं बनेगा। ऐसे पात्र जीव को ज्ञानी से उपदेश मिलता है, इसे देशना लब्धि कहते हैं। देखो मोक्ष मार्ग में ऐसा ही है कि जब जब किसी को सम्यक प्राप्त होता है तो या इस भव की देशना हो या पहले भी किसी कभी उसको प्राप्त हुई हो तो ज्ञानी की ही देशना होती है। जो स्वयं जिसने अनुभव किया है उसके द्वारा जो उपदेश मिलता है वो कार्यकारी है। और हमें भी जो आचार्यों के द्वारा ग्रंथ भी है ना, किसी को ऐसा भी हो सकता है कि पहले उसको देशना मिले और अभी वो ग्रंथ देख के उसको पहले की देशना काम कर जाती है, ऐसे भी हो सकता है। या डायरेक्ट ज्ञानी का उपदेश मिलने से उसको देशना की प्राप्ति हो जाती है। तो मात्र उपदेश तो यहाँ हमारा हमारी निमित्ताधीन दृष्टि हो तो कहाँ नजर जाती है, ज्ञानी पर। ये उपादान की तरफ से देखना, ज्ञानी की मात्र उपस्थिति होती है, उनका उपदेश होता है। ज्ञानी से ही अगर प्राप्त होता तो ज्ञानी तो सबको उपदेश देते तो सबको सम्यक हो जाना चाहिए और उपदेश सुनते ही सम्यक होना चाहिए। परंतु कब होगा, जब वो जीव करेगा तब। तो मात्र उपदेश सुनना देशना लब्धि नहीं है, आत्मा के स्वरूप का कथन जो रुचिपूर्वक सुनता है और तदनुसार आगम कथित प्रयोजनभूत सात तत्वों का ज्ञान करके जो तत्व निर्णय करता है। ये तत्व निर्णय महत्व की बात है। पहले तो सुनकर उसको ग्रहण करना, उसको याद कर लेना, वो बराबर उसको समझना और फिर उस पर विचार करना और तत्व निर्णय करना, उसी ने उपदेश ग्रहण किया कह सकते हैं। जैसे यदि रोहित से तुमने कहा कि जा बेटा एक ग्लास जल लेकर आ, सुनकर उसने जल लाया तो हम कहेंगे रोहित ने हमारी बात सुनी। मात्र कानून से सुनना और तदनुसार कार्य न करना, इसे हम लौकिक में भी सुनना नहीं कहते। वैसे आचार्य कहते ना, अरे तू अपने को जान। हाँ, तो हमने तो सारा समय सार पढ़ लिया, क्या पढ़ा, जैसे उन्होंने बताया वैसा तो किया नहीं, तो उनका उपदेश हमने सुना कि नहीं सुना है? वो जा बेटा जल लेकर आ, वैसी हमारी स्थिति हो जाएगी। देशना लब्धि के बाद प्रायोग्य लब्धि होती है। जीव तत्व ज्ञान के अभ्यास पूर्वक तत्व निर्णय करता है, आगम में आत्मा का स्वरूप जैसा बताया है वैसा अपने ज्ञान में निश्चित करता है, बारंबार आत्मा संबंधी विचार चिंतन करता है, यह प्रायोग्य लब्धि कहलाती है। पहली चार लब्धि प्राप्त करने वाले जीव को सम्यक्त्व होगा ही, ऐसा नहीं है। भव्य और अभव्य दोनों प्रकार के जीवों को ये चार लब्धि प्राप्त हो सकती है, परंतु जिसे सम्यक्त्व प्राप्त होता है उसे चार लब्धि के पश्चात करण लब्धि के परिणाम होते हैं, अर्थात करण लब्धि पूर्वक सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। कर्म की उक्षम अवस्था देखते समय हमने इसके संबंध में चर्चा की थी। हमने देखा था ना, करण लब्धि में आता है जीव तो बाद में वो भविष्यकालीन कुछ कर्मों का उसमें उपशम करता है, अंतर करता है, फिर उपशम करता है, तो ये करण लब्धि के परिणाम। करण लब्धि में जीव को कर्म में कुछ करना नहीं पड़ता। हम कहेंगे तो ऐसा है कि करण लब्धि के परिणामों के कारण वहाँ कर्म में अंतर पड़ा, फिर उसका उपशम हुआ, फिर ऐसे ऐसे हुआ, तो हम कहेंगे जीव ने कर्म का उपशम किया, निमित्त की भाषा। पर जीव ने क्या किया, सच देखो तो जीव तो अपने परिणामों में मग्न हुआ, अपने आत्मा के संबंध में जो विचार कर रहा था उस आत्मा में वो लीन हो गया, आत्मा को जानते रहा, और कर्म में अपने आप जो बनना था वो बन गया। तो कर्मों में कुछ उसको करने की जिम्मेदारी नहीं है, नहीं तो अभी हम उसको कैसे उपशम कैसे कराना। कर्म में कुछ हम कर सकते थे, अब मम्मी को तो पूछना तो कि रोटी कैसी बनानी, सिरा कैसा बनाना, वो तो मम्मी को पूछ कर करो आप, वो भी कथन पद्धति है कि हमने किया। वैसे कर्म में भी हमको कुछ करना पड़ेगा ना, उथल पुथल, उसको जरा हटाना पड़ेगा, स्पेस करनी पड़ेगी समय के लिए, क्यों कुछ नहीं करना पड़ता। जीव अपने में मग्न है और वहाँ कर्म में ये अवस्थाएं सहज बनती है। कर्म में कुछ नहीं करना पड़ता तो क्या कैसे हो जाता है सम्यक? तो पूर्व में तत्व निर्णय किया हो उसके द्वारा जब शुद्धात्मा की तीव्र रुचि जागृत होती है, कोई शास्त्र का वाक्य पढ़कर या जिन बिंब को देखकर ऐसी उसको अंदर की आत्म रस की तीव्र अभिलाषा उत्पन्न होती है, उसको आत्मा की महिमा सर्वोत्कृष्ट भाषित होती है, संपूर्ण जगत से निज शुद्धात्मा महान प्रतीत होने लगता है, तब उपयोग स्वसन्मुख होता है, करता है नहीं कि नहीं लिखा, हो जाता है। यही करण लब्धि है। इसके अनंतर वह स्वयं को ज्ञायक स्वरूप में जानने लगता है, उसे अतीन्द्रिय आनंद की अनुभूति होती है। आत्मा को जानता है तो किस रूप में? ज्ञायक। ज्ञायक कहने अकेले ज्ञान नहीं लेना, पूर्ण अनंत गुणों का अभेद ऐसा जो है उसको ज्ञायक नाम देते हैं, शास्त्र की ऐसी भाषा है। अकेला ज्ञायक भाव ने अकेला ज्ञान ऐसा भी नहीं लेना, पूरा आत्मा अखंड अभेद। यह कार्य जागृत अवस्था में साकार उपयोग द्वारा यानी ज्ञानोपयोग द्वारा होता है। ये अपने पहले जो सारी बातें गिनाई थी वो सारी लिए, अपन क्रम क्रम से लिए, एक साथ पूरी परिभाषा याद कराते तो नहीं समझते शायद, इसलिए यहाँ अलग अलग उसको उसी को तोड़ तोड़ कर एक 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 बात समझाइए। तो ज्ञानोपयोग द्वारा होता है। नींद में बातें करते करते या परसन्मुख उपयोग के काल में आत्मा की अनुभूति यानी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती, तो दिव्य ध्वनि सुनते सुनते होगी कि नहीं होगी? तो हम तो देखते कि शाही समय तो तीर्थंकर के पाद मूल में होता है, तो तीर्थंकर का लक्ष्य करने से होगा ना, होगा तो वहीं पर, परंतु उनका लक्ष्य छोड़कर अपनी आत्मा का लक्ष्य करेंगे तब होगा। उनका उपदेश सुनकर जैसा उपदेश में आत्मा का स्वरूप बताया वैसे अपने आत्मा के स्वरूप को जानेंगे तब सम्यक दर्शन होगा। निमित्त है वहाँ वाणी का, परंतु होगा तो अपने अपने कारण अपने में होगा और अपनी ओर देखने से होगा, भगवान की ओर देखते देखते सम्यक दर्शन नहीं होगा, क्योंकि शास्त्र में ऐसा ही आता है ना, जिन बिंब दर्शन सम्यक्त्व का कारण गिना है, तो भगवान को देखो और हो गया सम्यक्त्व, ऐसा नहीं, उनको देखकर अपना स्वरूप भास हो जाता है और अपनी ओर जब देखता है जीव तब सम्यक्त्व हो जाता है। तुम पूछोगी हमें सम्यक्त्व प्राप्त करना है उसके लिए अब हमें क्या करना होगा वह बता दे। देखो संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त मनुष्य तो तुम हो ही, शुद्धात्मा की रुचि भी तुम्हें है, इससे तुम भव्य हो इस बात का पता चलता है। पद्मनंदी आचार्य अपने पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ में कहते हैं कि जो जीव शुद्धात्मा की चर्चा वार्ता अत्यंत प्रीति चित्त से सुनता है वह निश्चित ही भव्य है और भविष्य में निर्वाण करने के लिए पात्र है। उन्होंने लिखा है तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि श्रुता निश्चितम स भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। भाजन यानी पात्र, भावी भविष्य काल में निर्वाण का पात्र है, यानी जल्दी शीघ्र ही मोक्ष जाने वाला है वो जी। तुम्हारी यह रुचि तुम्हारे मंद कषायों की द्योतक है, द्योतक यानी बताने वाली है। जिनेन्द्र कथित उपदेश भी तुम्हें प्राप्त हो गया है और हो रहा है, यानी यहाँ तक तो सारी बातें मिल गई। सबसे महत्व का कार्य है सच्चे देव गुरु शास्त्र का यथार्थ निर्णय करना। ये बिल्कुल महत्व की बात है, क्योंकि बाकी अब तक इतनी तो क्षोभ विशुद्धि देशना तक तो आ गए, अब क्या निर्णय, क्या क्या निर्णय करना है? देव शास्त्र गुरु का निर्णय। कुदेव को शास्त्र अर्थात गृहित मिथ्यात्व का सर्वथा त्याग करना। देखो सर्वथा शब्द लिखा है, थोड़ा सा रखेंगे, देखो सम्यक को होगा तो बाद में सोचेंगे उसको त्याग करेंगे, ऐसी बात नहीं चलेगी। मध्य मांस मधु शहद और पांच उदुम्बर फलों का त्याग करना, इसे अष्टमूल गुण धारण करना कहते हैं। ये तो बचपन से ही होता है, जब 40 दिन का बच्चा हो जाता है तो उसको माँ नमोकार मंत्र बताकर अष्टमूल गुण का उसको नियम देती है, और उसकी माँ की जिम्मेदारी होती है कि जब बच्चा 8 साल का होए तब तक वो पालता है कि नहीं पालता, हाँ अंडे के केक खाता है क्या नहीं खाता है, और कुछ ये सारी बातें अपना बच्चा नहीं करता है ना। छोटे छोटे बच्चे बहुत जल्दी समझ जाते हैं, वो रिया रोहन तक के वो सारे समझते, वो जाते तो हाँ ये अंडा होगा इसमें केक नहीं खाऊंगी, बराबर पता है उनको। जब बताते हैं कि इसमें ये कीड़े होते हैं, इसमें जंतु होते हैं, ये खाने योग्य नहीं हो, तो पूछ पूछ कर सारा करते हैं कि बच्चे उनको क्या समझ रहे। ऐसा नहीं, माँ बाप को ही नहीं समझता कि बच्चों को क्या बताना और क्या नहीं। तो ये अष्टमूल गुण का धारण, यानी ये तो अभी है। नीति युक्त सदाचारी जीवन व्यतीत करते हुए अध्यात्म शास्त्रों के अध्ययन से आत्म स्वभाव का निर्णय करना, सम्यक्त्व के लिए क्या क्या करना उसकी बात चल रही है, यानी अन्य शास्त्र नहीं पढ़ना इसकी बात नहीं चल रही है, ये यहाँ तो करना नियोग का हम अध्ययन कर रहे हैं। और सम्यक्त्व प्राप्ति के लिए क्या बताया है, अध्यात्म शास्त्रों के अध्ययन से आत्म स्वभाव का निर्णय करना, दिन में कुछ समय एकांत में चिंतन मनन करना, शास्त्र स्वाध्याय या चिंतन द्वारा शुद्धात्मा की महिमा लाकर उपयोग को स्वसन्मुख करना। देखो करना की भाषा करने में आ गई, सच कहूँ तो उपदेश की भाषा में ऐसा करो या वैसा करो कहा जाता है, इसको उपदेश कहते, सिद्धांत नहीं कहते। सामने वाले जीव को जब उपदेश दिया जाता है, प्रेरणा दी जाती है, तो तुम ऐसा करो वैसा करो ऐसी भाषा होगी, मतलब एक करू धरू का जब तक विकल्प है तब तक वो अनुभूति नहीं होगी। तो क्या कहते हैं कि ऐसा करो वैसा करो कहा जाता है, परंतु जिसे आत्मा की रुचि एवं लगनी लगी है उसे विकल्पात्मक भूमिका के अनंतर, पहले विकल्प की भूमिका आती है, स्टेज ऐसी आती है कि आत्मा संबंधी विकल्प आते हैं और फिर आत्मा संबंधी के विकल्प भी छूट जाते, अपने आप छूट जाते, कैसे आत्मा की तीव्र रुचि लग जाती है, तब विकल्प छूटकर निर्विकल्प अवस्था सहज प्राप्त होती है। मुझे विकल्प छोड़ना है, विकल्प छोड़ना है, विकल्प छोड़ना है, तो लक्ष्य किसका किया, आत्मा का क्या विकल्प का, हाँ मुझे राग छोड़ना है, राग छोड़ना है, राग छोड़ना है, किसका लक्ष्य किया, राग का। आत्मा का लक्ष्य करो, राग अपने आप छूट जाए, आत्मा का लक्ष्य करो, विकल्प अपने आप छूट जाए, उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। मुझे कुछ करना चाहिए, विशिष्ट शुभ भाव करना चाहिए, विकल्प करने चाहिए, विकल्प छोड़ने चाहिए आदि, करना चाहिए ऐसा जो अभिप्राय है वह गलत है। अभिप्राय की बात चल रही है, भाषा में होगा, उपदेश में भी आएगा ऐसा कि ऐसा करो या ऐसा करना चाहिए। अभिप्राय में अगर ऐसा होगा, हाँ ये करूँ वो करूँ वो करूँ 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 की है ना भावना, वहाँ मैं कौन हूँ इसका यथार्थ निर्णय होने पर यह करूँ करूँ की भावना नष्ट हो जाती है, क्योंकि अज्ञान अवस्था में ऐसे अभी हमें क्या करना चाहिए, प्रश्न तो ऐसे पूछते, हम अभी क्या करें तो हमें समय दर्शन हो जाएगा, तो सब कुछ करना छोड़ दो तो हो जाएगा, हम करे करे के पीछे है ना, तो ये करू करे की भावना भी नष्ट हो जाती है। जीव को जब सर्वप्रथम सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है तब औषमिक सम्यक्त्व ही होता है, ही लगाया, यह जीव पहले मिथ्यात्व गुणस्थान से, पहले गुणस्थान का नाम है मिथ्यात्व गुणस्थान, वो चौथे अविरत सम्यक्त्व गुणस्थान में आता है। चौथे गुणस्थान का नाम क्या है, अविरत सम्यक्त्व। उसके श्रद्धा गुण की मिथ्या दर्शन अवस्था पलट कर सम्यक दर्शन अवस्था प्राप्त होती है, यानी पहले गुणस्थान में वो मिथ्या दर्शन था, चौथे में उसको भी सम्यक दर्शन, ये श्रद्धा गुण की अवस्था पलट गई। हमने पहले ही गुणस्थान की परिभाषा में देखा था जीव के श्रद्धा और चारित्र्य की तारतम्य रूप अवस्था, तो मिथ्यात्व गुणस्थान में श्रद्धा गुण की मिथ्या दर्शन अवस्था थी, अब चौथे गुणस्थान में श्रद्धा गुण की सम्यक दर्शन अवस्था उसको प्राप्त होगी। अभी चारित्र में भी सम्यक चारित्र और ज्ञान में भी सम्यक ज्ञान होगा, हम यहाँ श्रद्धा की अपेक्षा बात करें। चौथे गुणस्थान का नाम अविरत यानी अवरत सम्यक्त्व है। इस गुणस्थान के जीवों को सम्यक्त्व तो है परंतु कोई भी विरति यानी व्रत नहीं है, पांचों इंद्रिया और मन से यह जीव विरत हुआ नहीं है, यानी पांच इंद्रियों के जो विषय है और मन द्वारा जो विषयों में उसकी प्रवृत्ति चल रही है तो वो अभी भी चल रही है उसकी, उससे उसको पूरी विरक्ति नहीं हुई है, उससे वो हटा नहीं है अभी। जो पहले उसके गृह संबंधी कार्य वगैरह चल रहे थे वैसे अभी चल रहा है उसका, पीछे हटा नहीं है। उसी तरह षटकायी जीवों की हिंसा से भी यह विरत नहीं हुआ है, यानी उसको बारह प्रकार में से कोई भी व्रत नहीं है, इसको इंद्रिय संयम और प्राणी संयम कहते ना, तो वो उसको है नहीं है। शास्त्र की भाषा में कहूँ तो इसे छह प्रकार का इंद्रिय संयम और छह प्रकार का प्राणी संयम नहीं है। जीव इनसे विरत न होने पर भी उसका इनमें स्वच्छंद प्रवर्तन नहीं होगा, ये महत्व की बात है। मिथ्या तो अवस्था में तो जो तीव्र कषाय है वो तो इनमें तो स्वच्छंदता से प्रवर्तन करता है, अब ये तो इससे हट नहीं सकता है, परंतु उसे अंदर से खेद है, अरे मैं कब व्रत धारण करूं, कब मैं मुनि हो जाऊं। पहले तो उसे ऐसा लगता है अरे मैं कहां पड़ा हूं, अभी चौथे में, अभी मैं अनुव्रत कब धारण करूंगा। बाह्य व्रत की महिमा ने अंतरंग स्थिरता कैसे करूं, वो ये पहचानता है जितनी अंतरंग स्थिरता होगी वैसे बाह्य व्रत के भाव भी सहज ही आएंगे और वो व्रत भी सहज ही पलेंगे। वहाँ ऐसा भी नहीं कि नहीं चलो अभी मुझे ये व्रत धारण करना है तो मैं ऊपर के गुणस्थानों में जाऊंगा, ऐसा भी अभिप्राय में है नहीं उसके। यहाँ चारित्र गुण की पर्याय में अनंतानुबंधी कषाय का अभाव है, हमने देखा ना एक चौकड़ी कषाय का अभाव है, परंतु अभी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संज्वलन कषाय विद्यमान है। इन जीवों को कभी कभी शुद्ध उपयोग होता है, किसी बात चल रही है कौन से गुणस्थान वाले जीव की, चौथे वाले की, तो उसको कभी कभी शुद्ध उपयोग होता है। इन्हें सच्चे देवगुरु और शास्त्र की भक्ति का राग आता है। जिनेन्द्र कथित प्रयोजनभूत सात तत्वों की इन्हें प्रतीति होती है, प्रतीति यानी पूरी श्रद्धा होती है। स्व और पर का भेद ज्ञान, अभी स्व को पहचान लिया उसने तो अपने से जो पर है उसका ज्ञान तो है वहाँ, परंतु वो कैसा ज्ञान है, अभी वो मैं नहीं हूँ ऐसा जान रहा है, पर को जानता नहीं, इसी बात नहीं, ये पर है और यह मैं नहीं हूँ, ये पर है और यह मैं नहीं हूँ, क्योंकि अपने को उसने ज्ञायक रूप अनुभव कर लिया, अभी मैं कैसा हूँ कौन हूँ ये तो जाना है, तो अभी अपने से भिन्न चीजें भी उसके ज्ञान में आ रही है, परंतु उसमें अभी उसमें एकत्व ममत्वपना नहीं रहा उसका, जानने का ये तो है, ज्ञान तो सबको जानेगा स्व को और पर को, हमने पहले देखा था ना, और श्रद्धा स्व को स्वरूप से स्वीकार करेगी, इतना ही श्रद्धा का काम है, ये मैं नहीं हूँ ये ज्ञान का काम है। ज्ञान क्या जानेगा, ये पर है वो पर है मैं नहीं हूँ, ये स्व है ये मैं हूँ, ये सारा निर्णय करना जानने का काम ज्ञान का है। श्रद्धा जो स्व जानने में आया यही मैं हूँ ऐसी श्रद्धा उसने कर ली। स्व पर का भेद ज्ञान तथा आत्मा की प्रतीति कायम रहेगी, प्रतीति यानी अनुभूति सतत नहीं है परंतु अनुभव यानी प्रतीति है, श्रद्धा है। जैसे कोई आपका हीरो काम करता है फिल्म में तो वो काम किसी कुली का कर रहा है, तो मैं अमिताभ बच्चन हूँ ये उसको प्रतीति बनी है कि नहीं बनी, वो तो कार्य क्या कर रहा है, वो सारा जो रोल उसने एक्सेप्ट किया है उस रोल के अनुसार वो सारे उसकी भावनाएं, तभी वो उस रूप भी अनुभव भी करे हुए उसका दुख का भी अनुभव कर रहा है, वैसे वो बता भी रहा है परंतु वो अंदर ही अंदर उसकी प्रतीति ना मैं कौन हूँ, मैं मेरा घर कहाँ है, मैं कैसा करोड़पति हूँ ये सारा जानता है ना वो, तो वैसे इसके आत्मा की प्रतीति बनी रहती है, रटना नहीं पड़ता मैं शुद्धात्मा हूँ शुद्धात्मा हूँ शुद्धात्मा हूँ। उसके कार्य सारे चल रहे, दुकान में बैठा होगा वो ग्राहक के साथ झगड़ा भी करता होगा फिर भी वहाँ उसके आत्मा आत्मा हूँ ऐसी प्रतीति बनी रहेगी। इनके बाह्य आचरण में कुछ परिवर्तन दिखाई नहीं देता फिर भी इनके अंतरंग में जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है। आप पूछते ना ज्ञानी को कैसे पहचाना, तो बाह्य आचरण से अगर पहचानना चाहते हो तो वो शक्य नहीं है, उनके अभिप्राय देखो उनकी वाणी देखो उस पर से आपको पता चलेगा, परंतु आचरण में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं होगा। इनके विपरीत अभिप्राय का नाश हो गया है, इन्हें आत्मानुभूति हुई है, इन्हें निरंतर भेद ज्ञान वर्तता है। इन्होंने स्वयं को स्वस्वरूप में स्वीकार किया है और ये पर को पर जानते हैं। इन्हें रागादि यानी कषाय तो विद्यमान होते हैं, परंतु उन राग का स्वामीपना इन्हें नहीं रहता। राग का राग नहीं है। देखो बहुत महत्व की बात है सारी, कि सम्यक दर्शन होने के बाद उनमें क्या क्या परिवर्तन हुआ है। राग तो अभी है, अनंतानुबंधी चला गया, फिर भी अभी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संगलन है और उनमें भी ऐसा तीव्र हो सकता है कि युद्ध में जाके लड़ाई भी करेगा। फिर भी जो राग है उसको अपने से भिन्न पहचानता है। वो राग में उनको एकत्व बुद्धि ममत्व बुद्धि नहीं है, उसका स्वामीपना नहीं है। अपने में राग है उसको भूमिका के अनुसार वो जानते हैं कि हाँ इतना राग अभी है और वो छोड़ने लायक है, ऐसा भी उनका श्रद्धान है। इन जीवों को सच्चे देव गुरु शास्त्र के भक्ति प्रभावना के परिणाम आते हैं, परंतु उस समय भी यानी अकेले क्रोध के परिणाम को अपने से भिन्न जानता ऐसे नहीं, जो भक्ति के परिणाम है उस समय भी उनकी स्वभाव सन्मुखता की भावना और बल कायम रहता है। यानी वो भी छोड़कर मैं कब स्वभाव में चला जाऊं, ऐसी वो भावना उनकी सतत बनी रहती है। भक्ति स्वाध्याय अध्ययन अध्यापन आदि द्वारा भी ये जीव स्वभाव का ही रस पुष्ट करते रहते हैं। यानी क्यों अध्ययन करते हैं, ये उसमें अपनी स्वभाव की बात आती है तो स्वभाव का रस और बढ़ता है और वो पढ़ते पढ़ते भी ऐसे भाव बन जाते हैं, अरे चलो ये छोड़कर मैं स्वभाव में, तो शास्त्र सामने पढ़ा रहेगा और वो अपना चिंतन में मग्न हो जाएगा और अनुभव कर लेगा। तो अनुभव का यानी स्वभाव का रस पुष्ट करने के लिए ये सारी बातें होती है। भक्ति में भी ऐसा होता है, स्वाध्याय में होता है, सिखाते सिखाते भी जो हम तत्व निर्णय करते वो और दृढ़ हो जाता है। तो ये सारी बातें अपने स्वभाव का रस पुष्ट करने के लिए करता है और इन सब बातों को छोड़कर स्वभाव में अंतर्मग्न होने की उनकी प्रवृत्ति भी होती रहती है। अकेली भावना भी नहीं, प्रवृत्ति भी होती है, वो छोड़कर वो अपने स्वभाव को पकड़ लेते हैं। हमने देखा था कि चारों ही गति के जीव सम्यक्त्व प्राप्त कर सकते हैं। संगी पंचेन्द्रिय पर्याप्त तिर्यंच मनुष्य देव और अथवा नार की पहले गुणस्थान से चौथे गुणस्थान में जा सकते हैं। अब यहाँ अकेले चौथे की चर्चा चल रही है ना, इसलिए अन्य कहीं जाते कि नहीं जाते उसकी चर्चा नहीं की। मरण के बाद अन्य भव में भी चौथा गुणस्थान कायम रहता है, अर्थात सम्यक्त्व कायम रहता है। यानी कोई यहाँ सम्यक्त्व के साथ मरा तो वो सम्यक्त्व उसका टूट नहीं जाएगा, उसके साथ वो बना रहेगा। सम्यक दृष्टि जीव निरंतर भेद ज्ञान का अभ्यास करता रहता है। अभ्यास यानी वो प्रैक्टिस करता है, हमेशा हर समय हर बात चलती रहती है तो उसका भेद ज्ञान भी चलता है। कोई भी कार्य हो रहा है, अभी रोटी बना रही है या कोई अन्य कुछ कर रहा है, तो उस समय भी वो उसका भेद ज्ञान चलता है। पढ़ा रहे तब भी ये क्या ये वाणी का कार्य है, ये क्या क्या चल रहा है, ऐसे दरेक का कार्य वो अलग अलग उसमें वो डिफ्रेंशिएट करता है, तो उसका भेद ज्ञान हमेशा चलता रहता है। वह सांसारिक कार्यों में संलग्न होता है, फिर भी उसे स्वयं की प्रतीति सदा विद्यमान रहती है। इनसे मैं ये जानने वाला मैं तत्व अलग हूँ, ऐसी उसको बनी रहती प्रतीति। यानी वो ऐसा रटना नहीं पड़ता उसको, ये सहज ही अंतरंग से ऐसी परिणति बनती है। तुम कहोगी शुद्धोपयोग का काल तो अल्प है, उसके पश्चात जीव शुभोपयोग या अशुभोपयोग में जाएगा ही, तब उसका सम्यक्त्व कैसे टिकता होगा। यानी अशुभोपयोग में है, अभी खाना खा रहा है या बच्चे पर गुस्सा कर रहा है, तो उसका सम्यक्त्व टिकेगा कि नहीं टिकेगा। हाँ देखो, जब सर्वप्रथम सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है तब वह नियम से शुद्धोपयोग अवस्था में ही होती है, परंतु शुद्धोपयोग के पश्चात उसका सम्यक्त्व नष्ट नहीं होता। स्वयं का भिन्न अनुभव लेने के पश्चात, स्वयं की पहचान करने के बाद उसका स्वयं में स्वपना कायम रहता है। शुभ भाव या अशुभ भाव के होते हुए भी उसकी यह प्रतीति नष्ट नहीं होती। यह कैसे संभव है, उसे दृष्टांत के माध्यम से समझेंगे। जिस तरह कोई फिल्म अभिनेता फिल्म शूटिंग के समय भिखारी का अभिनय करता होगा, तो उस समय वह सचमुच भिखारी ही भासित होता है, फिर भी वह अपने असली नाम स्वरूप अस्तित्व को भूलता नहीं है। यदि वह अपना स्वरूप ही भूल जाएगा तो भिखारी की तरह दर दर भटकेगा, यानी सचमुच वो अपने को भिखारी मानेगा तो वो शूटिंग के बाद भी जाकर रोड पर भिक्षा ही मांगते रहेगा, भूखा रहेगा, भीख मांगते फिरेगा, परंतु ऐसा कुछ भी तो नहीं होता। अभिनय के तो उसे करोड़ों रुपए मिलते हैं, भिखारी के वेश में भीख मांगते हुए वह प्रत्यक्ष दिख रहा है, फिर भी उसी क्षण उसे स्वयं के बड़प्पन महिमा की पूरी प्रतीति है। इसके लिए उसे अपना नाम रटना नहीं पड़ता, उसे बारंबार स्व संबंधी विकल्प भी नहीं करने पड़ते कि अरे मैं तो फला अभिनेता हूँ। अभिनेता घर में हो या अभिनय करता, घर में भी वो अपने को उस विशिष्ट कोई व्यक्ति रूप मानता है, अभिनय करते इस समय भी तो स्वयं के स्वरूप का भान उसे निरंतर वर्तता है, यानी अभिनय करते समय वो भूल जाता है ऐसी भी बात नहीं है। उसी तरह अभी आत्मा पर घटाते, उसी तरह जिसने आत्मा का अनुभव किया है उसे अपने स्वरूप की गायबपना की प्रतीति सतत चालू रहती है, चाहे वह स्व को जानता हो या पर को जान रहा हो, अर्थात शुद्धोपयोग, शुभोपयोग अथवा अशुभोपयोग में हो, उसे अपने स्वरूप के बारे में रटना नहीं पड़ता। सतत मैं गायक हूँ, मैं शुद्ध हूँ आदि विकल्प करने नहीं पड़ते, वैसी अनुभूति तो बनी रहती है परंतु उसको विकल्प नहीं करने पड़ते। इसमें फर्क आया ना, श्रद्धा तो बनी है परंतु ऐसा सोचना नहीं पड़ता कि मैं ऐसा हूँ ऐसा हूँ ऐसा, तो आपको सोचना पड़ता होगा मैं दीपाली हूँ, भूल जाती होगी कभी कभी। तो वैसे जिसने अपने को पहचाना है मैं शुद्धात्मा हूँ, तो उसको वो भूलता नहीं है, वो बना रहता है इसका सहज उसमें आत्मापन, सहज रीति से स्व में स्वपना कायम रहता है। समय दृष्टि जीव को राग विद्यमान होने पर भी वह राग का स्वामी नहीं होता, राग के प्रति उसे राग द्वेष नहीं होते, राग की महिमा भी उसे नहीं आती। मुझे अभी ऐसा राग आया कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ, वो जानता होगा ना कि अपने में कुछ ऐसा विशिष्ट शोभा हो रहे है, तो उसको बहुत महिमा आती होगी, आती होगी कि नहीं होती, क्योंकि राग की महिमा नहीं है। किसी ने समझो बताया उसको आऊगी यानी मैंने, अरे तो तीर्थंकर प्रकृति बांध रहा है, हाँ मैं तीर्थंकर होने वाला हूँ, महिमा आ जाएगी उसको, ऐसा नहीं होगा। तो राग के प्रति उसको राग नहीं है, पहले से अधिक उच्च प्रकार के शुभ राग उसे सहज आते हैं, परंतु अब उसे उनमें दुख रूप वेदन अनुभव में आता है। हाँ एक बात सच है कि मिथ्यात्व अवस्था की तुलना में राग के काल में भी उसकी आंशिक निराकुलता कायम रहती है, यानी जितना राग है उतना दुख रूप वेदन भी है, और जितनी वितरागता है उतनी निराकुलता भी है, ये दोनों एक साथ चल रहे हैं। इस जीव को सतत ऐसी भावना वर्तती है कि मैं स्वयं के स्वभाव का अधिक से अधिक अवलंबन लेकर अधिक आत्मस्थिरता प्राप्त करूं, आत्मा में ही रम जाऊं। जिसे आत्मा का अनुभव हुआ है ऐसे जीव को शुद्धोपयोग की ही तीव्र इच्छा रहती है, स्वरूप स्थिरता नहीं होती तब उसके शुद्धात्मा संबंधी, आगम संबंधी, छह द्रव्य सात तत्व संबंधी, कर्म गुणस्थान त्रिलोक रचना आदि आगमोक्त बातों संबंधी विचार चिंतन अध्ययन और अध्यापन चलता रहता है। यानी समय दृष्टि को जब शुद्धोपयोग नहीं है तो ये सारी बातें बनेंगी। दिन प्रतिदिन उसकी सांसारिक कार्यों के प्रति उदासीनता बढ़ती जाती है, उसकी सत्समागम की रुचि बढ़ती है, अध्ययन अध्यापन विशेष रीति से होने लगता है, देव गुरु शास्त्र के प्रति उसे अत्यंत बहुमान वर्तता है, उनकी वह भक्ति करता है। समय दर्शन प्राप्त होता है तब जीव पहले गुणस्थान से चौथे गुणस्थान में जाता है, इसे हमने देखा। कोई जीव मिथ्यात्व गुणस्थान से अन्यत्र भी गमन करते हैं, जैसे कोई जीव पहले में से पांचवें गुणस्थान में तो कोई सातवें गुणस्थान में जा सकते हैं। पांचवें गुणस्थान में जाने वाले जीव की पात्रता यह है कि उसने बुद्धिपूर्वक अनुवृत्तियों का ग्रहण करना आवश्यक है। सम्यक्त्व प्राप्ति के लिए अन्य जो पात्रता पहले बताई थी वे भी आवश्यक है ही। पहले गुणस्थान में से सातवें गुणस्थान में जाने वाले जीव के लिए ऊपर बताई हुई पात्रता के साथ दिगंबर जिन दीक्षा धारण करना, अर्थात आगमोक्त यानी आगम में बताए हुए 28 मूल गुणों का पालन करना अत्यावश्यक है। इसे शास्त्र में द्रव्यलिंग कहा है। द्रव्यलिंग धारण किए बिना भावलिंग यानी सात्विक गुणस्थान जितनी विकराकता अर्थात अंतरंग मुनिपना हो नहीं सकता। उनको ऐसा मानेंगे अभी तो कपड़े के साथ पहले मुनि दशा आ जाएगी और बाद में जाकर वो जीव दीक्षा लेता होगा, तो ऐसी बात नहीं है। चौथे गुणस्थान में से जीव ऊपर के गुणस्थानों में कैसे जाता है इसकी चर्चा हम आगामी पत्र में करेंगे। तुम कहोगे कि पहले गुणस्थान के बाद हमने चौथे पांचवे सातवें गुणस्थानों की चर्चा प्रारंभ की, परंतु दूसरे तीसरे और छठवें गुणस्थान को क्यों छोड़ दिया? सुनो, औष्णिक सम्यक्त्व के काल में, देखो यह तब ये जरा ध्यान से सुनो, यदि अनंतानुबंधी कषाय का उदय होगा तो जीव सम्यक्त्व से भ्रष्ट होता है, तब उसे दूसरा साक्षादन सम्यक्त्व नाम का गुणस्थान प्राप्त होता है। उस गुणस्थान में एक समय से लेकर छह अवली, एक अवली इज इक्वल टू असंख्यात समय, इतने काल तक रहकर वह जीव नियम से मिथ्यात्व गुणस्थान में जाता है। ये बाद में सारी बातें आएंगी, कौन जीव कहाँ से कैसे जाता है उसके दूसरे गुणस्थान की जब हम डेफिनेशन देखेंगे तो इसके फिर देखेंगे। सम्यक्त्व प्राप्ति के बाद कई जीवों की श्रद्धा डगमगाती है मिथ्यात्व सहित अलग ही जाति का, यानी जात्यंतर, जाति अंतर उसको कहते जात्यंतर, मिश्र परिणाम उनके होता है। उस समय सम्यक मिथ्यात्व नाम की दर्शन मोहनी कर्म की प्रकृति का उनके उदय रहता है। ऐसे जीवों को तीसरा मिश्र अर्थात सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान होता है, इसका भी काल अल्प यानी अंतर मुहूर्त है। उसके बाद जीव पहले या चौथे गुणस्थान में जाता है। वो कौन सा जीव कहाँ जाता है वो सारी अलग, उसमें नियम उसके अलग अलग है, हम या तो स्थूल रूप से चर्चा करें। छठवां गुणस्थान मुनि का शुभोपयोग का गुणस्थान है और सातवां शुद्धोपयोग का गुणस्थान है। मुनि सतत छठवें सातवें गुणस्थान में झूलते हैं, सातवें गुणस्थान में से ही छठवें में आते हैं, उसकी चर्चा आगे करेंगे ही, आज यही विराम लेंगे। तो आज यहाँ मुख्यतः मिथ्यात्व जीव के परिणाम और सम्यक्त्व प्राप्त होने के बाद क्या क्या बनता है इसकी चर्चा हमने की। जावानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सो वाणी मस्तक नवो सदा देख।